कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदनंदन व्रज जन राजन यशोदनंदन व्रज जन राजन यशोदनंदन व्रज जन राजन यशोदनंदन व्रज जन राजन यमुना तेरा वन चारु यमुना तेरा वन चारु
Yeah. श्री श्री राधा गोविंद देव के वृंदावन धाम के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का यहाँ पे आज स्वागत है। हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि कल प्रोग्राम बारिश और आंधी और तूफान के कारण नहीं हो पाया और इसी कारण से हम आज टेंट जो बाहर लगा हुआ था उससे वंचित हैं, पर फिर भी जो आयोजक हैं तृतीया प्रभु हैं, दूसरे भक्तों ने और माताओं ने मिलकर यहाँ पे आज सारा पानी, यहाँ पे एक फुट पानी खड़ा था, उसको ड्राई करवाया और उसके बाद ये बैठने की हमारी सुंदर व्यवस्था हो सकी। तो उस सब के लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आज हमारे कथावाचक हैं, ये प्रभु जी पहले दिन भी आए थे, जिस तरह सर्व साक्षी प्रभु जी, ये इन्होंने अपना सारा जीवन इस्कॉन और प्रभु को आपके मिशन को समर्पित किया है और ये सारे भारत में भ्रमण कर गए, प्रचार करते हैं और अपना सारा समय अध्यापन में और प्रचार में लगाते हैं। इनके लिए हम तीन बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा पर
हरे कृष्णा। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए अपने हाथ जोड़कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका पुनः स्वागत है इस भागवतम सत्र में। तो आप अलग अलग विषयों पर श्रवण करते आए हैं, श्रीमद् भागवतम की कथाओं को। तो श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में धारण करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो है कि श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से और लगातार श्रवण किया जाए। जैसे आपको याद होगा कि सबसे शुरुआत में पहले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है और भागवतम कलयुगा के लिए सर्वोत्तम साधन है भगवत कृपा को प्राप्त करने का और भगवान की जो कृपा है अपनी ओर आकर्षित करने का। तो इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में अवतरित होते हैं और महामुनि कृते श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। तो जब परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के इन अलग अलग कथाओं को सुनते जा रहे थे, अलग अलग वर्णनों को सुनते जा रहे थे, तो परीक्षित महाराज के लगभग चार या पांच पांच दिन बीत गए और भगवान के बारे में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते जा रहे थे। तो लेकिन पांचवे दिनों तक शुकदेव गोस्वामी भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, अलग अलग जो अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन करते जा रहे थे। नरसिम्हा है, वराह है, कूर्मा है, भगवान राम आदि है। नवे स्कंद में उन्होंने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया और बताया कि भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम इस जगत में अवतरित होते हैं मर्यादा की स्थापना करने हेतु और भगवान राम के समान कोई आदर्श राजा नहीं है, आदर्श भ्राता नहीं है, आदर्श पति नहीं है। तो ऐसे भगवान राम का वर्णन करते हुए उन्होंने कई सारी राम की लीलाओं का वर्णन किया और जैसे भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया तो उसके उपरांत शुकदेव गोस्वामी जो श्रोता हैं, कितने लोग सुन रहे थे भागवत की कथा को? हजारों हजारों लोग। हमें ऐसे लगता है कि श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उसको केवल राजा परीक्षित अकेले बैठ के सुन रहे थे और शुकदेव गोस्वामी अकेले वर्णन कर रहे थे, ऐसे नहीं। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला है इस बात की जो न्यूज है समाचार पूरे विश्व में ब्रह्मांड में फैला। ब्रह्मांड में मतलब ऐसे नहीं हुआ कि ये जो हस्तिनापुर है आजकल जो इंद्रप्रस्थ है अपोलो इंद्रप्रस्थ, तो ये स्थान खांडव वन था जहां पांडवों ने अपना मय दानव के द्वारा बड़े महल की रचना की थी और उसमें वो निवास करने लगे थे। तो भगवान की योजना के अनुसार जब परीक्षित महाराज को शाप मिला तो परीक्षित महाराज के ये समाचार पूरे अलग अलग लोकों में फैला, स्वर्ग लोक तक ये न्यूज चली गई और परीक्षित महाराज गंगा के किनारे गए और उन्होंने बैठ गए सुनने के लिए। तो उस समय स्वर्ग के देवता आ जाते हैं। देवता क्या लेकर आते हैं? अमृत का कलश लेकर आते हैं और देवतागण कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, आप श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण कथामृत है, भागवतम क्या है? कृष्ण कथा का अमृत है। आप इस परीक्षित को जो शाप मिला है, परीक्षित को बचाना चाहते हैं, तो ये अमृत पिलाओ, हम लेके आए हैं स्वर्ग से। स्वर्ग के देवता अमृत लेकर अमृत का पान करते हैं अमर होने के लिए, लेकिन उनको सदैव मृत्यु का भय लगा रहता है। तो जब ये अमृत का कलश लेकर आ गए और शुकदेव गोस्वामी के सामने कहा कि शुकदेव गोस्वामी आप ही थोड़ा इसको पी लीजिए और परीक्षित को भी पिलाइए, लेकिन जो आप कृष्ण कथा जो सुनाने जा रहे हो वो कृष्ण कथा परीक्षित को न सुनाकर हमें सुनाइए। मतलब देवता गण भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को, कथाओं को, उनकी महिमा को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं। अमृत देवताओं को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि वास्तव में आप योग्य नहीं हो कृष्ण कथा को सुनने के लिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर भौतिक भोग की क्या है, बहुत बड़ी लालसा है, इच्छा है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कृष्ण कथा रूपी अमृत को सुनने के लिए तो ये राजा परीक्षित योग्य है, क्योंकि वो तैयार है और वो बिल्कुल तत्पर हो गए हैं कि अभी मेरे पास अधिक समय नहीं बचा है इस शरीर को त्यागने के लिए। तो फिर शुकदेव गोस्वामी कृष्ण कथा परीक्षित महाराज को सुनाने तत्पर हो जाते हैं। तो अभी पांच दिन बीते तो शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि मैं अपने जो शिष्य हैं, डिसाइपल हैं, इनको थोड़ी परीक्षा लेता हूं। उन्होंने कहा, हे परीक्षित, लंबा समय बीता है। और ऐसे नहीं था कि रोज परीक्षित महाराज 2 घंटा सुनते थे और जाके बीच में अपने कोठे में जाके सोते थे, खा पी कर आ जाते थे, ऐसा नहीं था। एक बार शुकदेव गोस्वामी बैठ गए व्यास आसन पर और परीक्षित महाराज भी बैठ गए तो अंतिम 7 दिन के बाद ही वो उठे। पूरे रात्र भर कृष्ण कथा हो रही थी, दिन में भी कृष्ण कथा हो रही थी। इसी को कहते कीर्तनीय सदाहरि। अभी कलयुग का जो जीव है उसको 1 घंटा भारी लगता है, 1 घंटा उसको लगता है कि पहाड़ उसके सर पर रखा गया है, सारी हड्डियां दर्द करने लगते हैं और उसमें जो हमारा पागल मन है वो बैठना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, सामाजिक रीति रिवाज है तो थोड़ा आकर बिठाते हैं कि मैं भी कौन हूं, धार्मिक हूं, मेरी भी भगवान में बड़ी आस्था है, मैं भी भगवान का भक्त हूं। तो ये सारे भौतिक बहाने लेकर हम कृष्ण कथा के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनने के लिए परीक्षित जैसी तत्परता या परीक्षित जैसी लालसा कदापि नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते, अरे परीक्षित, 5 दिन बीत गए, ना रात्रि को देखा तुमने ना दिन को देखा, निरंतर सुनते जा रहे थे। और वास्तव में परीक्षित महाराज एक चातक पक्षी की भांति तत्व सुन रहे थे लालसा। जैसे चातक पक्षी होता है चकोर, पहले जो वृष्टि का जल का पान करना चाहता है, वो पानी पिएगा तो जो आकाश से गिर रहा है उसी को पान करेगा और अपनी चोंच को सदैव ऊपर करेगा और देखते हुए सोचते रहेगा कि कब जल की वर्षा होगी और मैं उसका पान करूंगा। बल्कि वो भयभीत नहीं होता कि बिजली आदि जो भयावह चीजें उसके सर पर गिर सकती है उसकी चिंता नहीं करता, वो सदैव उस जल का पान करना चाहता है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी किसी और चिंता को उन्होंने धारण नहीं किया, निश्चिंत होकर कृष्ण के बारे में सुनने के लिए तत्पर हुए। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अरे जाओ, अबे बीच में थोड़ा गैप ले लो, आधा घंटे का गैप। हम हमेशा सोचते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, अभी 5:30 बज गए, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी ने कृष्ण लीला का वर्णन करना शुरू करने से पूर्व उनको कहा कि ये सही में योग्य है या नहीं, क्योंकि इस जगत में यदि दो भगवान के जो दो अलग अलग अवतार है, भगवान कृष्ण है और राम है, तो इनमें सबसे अधिक गलत फहमियां किसी के बारे में है तो वो कौन है, कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण को समझना ये बहुत कठिन है। इवन ब्रह्मा, शिव, चंद्रमा, सूर्य, दुर्गा, ये सभी देवी देवता भगवान को समझ नहीं सकते। ये सारी देवी देवता उनके सेवक हैं जो उनके चरणों की धूलि की कामना करते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण के लीला का वर्णन करने के लिए शुकदेव गोस्वामी तत्पर हो गए। तो शुकदेव गोस्वामी ने जा जैसे कहा, परीक्षित महाराज कहते कि नहीं, आप क्या सोच रहे हो शुकदेव गोस्वामी, कि मैं उस समय भूख और प्यास से थोड़ा सा परेशान हो गया था जिसके कारण मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी जो आप ये कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे हो, भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हो, ये अमृत के समान है, मुझे अभी भूख और प्यास कष्ट नहीं दे रही है, सता नहीं रही है, मैं कृष्ण कथा को सुनने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। तो ऐसे परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद या कृष्ण लीला का वर्णन सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं अवतीर्ण यदो वंशे भगवान भूत भावना। ये शुकदेव गोस्वामी जो यदुवंश में प्रकट हुए परम भगवान कृष्ण है उनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। अभी आप अपने बहुत सारे अवतारों का वर्णन किया है लेकिन जो मूल भगवान है उनके बारे में वर्णन करो जिनसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। भागवतम की शुरुआत में वर्णन आता है एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है तो भागवत स्थापित करता है कि कृष्ण परम भगवान है। क्यों भागवत की कथाएं की जाती हैं? बाकी पुराणों की इतनी अधिक कथाएं क्यों नहीं की जाती? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण परम उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है। सारे जीव और सारे देवी देवता उनके शाश्वत सेवक हैं। इसी कारण से परीक्षित महाराज ने कहा कि जो यदुवंश में प्रकट हुए परम भगवान कृष्ण उनके बारे में आप वर्णन कीजिए जो भगवान भूत भावना। भावना का मतलब है कि हमारे भावना का मतलब है प्रेम। क्या सारे जीवात्माओं के प्रेम के जो विषय हैं वो कृष्ण है? प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है, प्रेम करने योग्य कोई व्यक्ति है तो वो कृष्ण है। ऐसे कृष्ण के बारे में आप वर्णन कीजिए है ये पहली चीज। मैं क्यों सुनना चाहता हूँ? क्योंकि कृष्ण मेरे प्रेम के विषय है। दूसरी चीज परीक्षित महाराज कहते हैं क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनना ये सर्वोच्च दवाई है। इसलिए भागवत की शुरुआत में ही, दशम स्कंद की शुरुआत में ही परीक्षित महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनता वो जानबूझ के अपने जीवन में विष का पान कर रहा है। क्योंकि ये कथाएं अमृत के समान है या विशेष औषधि के समान है और ये औषधि हमारे जो भव रोग है जिसके कारण सदैव हम तप्त रहते हैं अपने भौतिक जीवन में, परेशानी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परमानेंट समूल उसका विनाश हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की जो कथाएं हैं उनके लिए, उनको सुनने के लिए तत्पर हो जाता है। और देखा जाए तो भागवत दवाई है। एक व्यक्ति था बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत धन आदि संपदा उसके पास थी लेकिन उसकी एक समस्या थी। क्या समस्या थी? नींद नहीं आती थी। अभी व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है लेकिन पूछा जाए तो वो कहेगा नहीं, एक समस्या मेरे जीवन में है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत में। तो वो उसको नींद नहीं आती थी, कई सारी दवाइयां खाता था रात को नींद आने की लेकिन फिर भी नींद आना कष्टमय था। लेकिन एक बार उसको पता चला कि कब भागवत की कथा हो रही है, कोई स्वामी जी आया है और भगवान की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो उसने सोचा चलो रास्ते में ऐसे कोई हॉल था उसी में जाके सबसे पीछे बैठ गए। पीछे बैठ गए तो जो स्वामी जी आए थे उनके शिष्य आदि सब बैठे हुए सुन रहे थे। सुनते सुनते ये व्यक्ति इतना ये हो गया कि सुनते सुनते वो खराटे लेने लगा, नींद आने लगी और इतना लंबा कथा खत्म भी हो गई तभी वो बैठे बैठे खराटे ले जा रहा है, सो रहा है। तो सारे शिष्यगण सारे लोग उठ गए तो जो स्वामी जी थे उन्होंने कहा नहीं नहीं उनको क्या करो, सोने दो। उनको पता था इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो जब सुबह हो गई तो वो व्यक्ति आनंद से नाचने लगा, कहीं सोचने लगा कि मैं अपने जीवन में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स दवाई डॉक्टर्स क्या क्या नहीं किया और रोज परेशान रहता हूँ, सुखी जीवन क्या है जिसको बिना किसी परेशानी की नींद आ जाए, बस उससे अधिक सुख नहीं है। तो जब वो उठा नाचने लगा उन्होंने कहा ये क्या दवाई है? तो उन्होंने साधु ने कहा तुम रोज आया करो। रोज आने लगा उसकी जो प्रॉब्लम है दूर होने लगी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो भगवान के बारे में सुनने लगा वैसे वैसे कृष्ण कथा उसको मीठी लगने लगी, आनंद उसका बढ़ने लगा और वो महान भगवान का जो भक्त है वो बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो कृष्ण है जिनके बारे में सुनने से हमारे हृदय में जो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है, इस जगत में भोग करने की भावना है, उसका विनाश हो जाता है और भगवान के प्रति हमारा जो अहेतु की प्रेम है वो बढ़ता है। फिर परीक्षित कहते कि मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ कि ये कृष्ण जो परम भगवान है, इन्होंने मेरे जो दादा परदादा है उनको बचाया है, पांडवों की रक्षा की है, ऐसे कृष्ण के बारे में मैं सदैव सुनना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की अपनी माता के घर में, उत्तरा के घर में जब मैं था तब कृष्ण ने मेरी रक्षा की है। इवन मेरे जो दादा है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, इन सब की भी उन्होंने रक्षा की है। और वास्तव में पांडवों का जो जीवन है वो कृष्ण के लिए पूर्ण रूपे न समर्पित था और कृष्ण सदैव उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा हो या फिर ईर्ष्यावश जो दुर्योधन है दुर्वासा को वनवास में जंगल में भेजता है पांडवों के पास, हाँ जाओ, तो दुर्वासा जाते तो क्या मांगते वहां जाकर कि हमें बहुत भूख लगी है। अकेले दुर्वासा नहीं आए थे, 80,000 से अधिक शिष्यों को लेकर जो दुर्वासा वन में पहुंचे, क्योंकि दुर्योधन को लगा कि दुर्वासा बहुत तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और वो पांडवों को शाप दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि जाते हैं वहां, तो द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इनको भेजो स्नान करने के लिए, तब तक हम प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तो उनके पास अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास। फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे द्रौपदी कुछ बचा है भोजन? तो द्रौपदी ने खा लिया था सबको खिलाने के बाद, और उसके बाद कोई भी चीज उस अक्षय पात्र से नहीं आ सकती। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होगा, जो सदैव देता रहता है। तो फिर द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई। जब भी भक्त चिंतित होता है तो वह केवल भगवान का स्मरण करता है। भगवान कहते अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भावना से मेरा स्मरण करता है, मैं उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और उसके पास जो चीजें हैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये कृष्ण के वचन है। हाँ, मतलब आवश्यकता की चीजें भी देंगे और उसके पास जो चीजें हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। तो लेकिन उसके लिए भगवान चाहते हैं कि बिना किसी हेतु के मेरी भक्ति की जाए। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, जय जगदीश हरे, कष्ट मिटे तन का, मेरे शरीर के कष्ट दूर हो जाए, मेरे पास ये धन आए, संपत्ति आए, इसके लिए भगवान नहीं है। भगवान कहते कि ऐसे व्यक्तियों से तो मैं दूर रहता हूं। भगवान तो केवल अहेतु की प्रीति चाहते हैं, जो वृंदावन वासियों की थी। तो ऐसे परम भगवान के बारे में सुनना चाहते थे। तो जैसे द्रौपदी ने तुरंत स्मरण किया तो कृष्ण आए, कहा हे द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ है आपके पास? तो उन्होंने कहा अक्षय पात्र तो देखते हुए कुछ है नहीं। कृष्ण कहते नहीं नहीं है, है। तो एक शाक का टुकड़ा लगा हुआ था। कृष्ण उसको लेते और जैसे ग्रहण करते हैं तो दुर्वासा मुनि और उनके जो सारे शिष्य गंगा में स्नान करने गए थे तो वहां तृप्त हो जाते हैं, पेट पर हाथ घुमाने लगते और डकार देने लगते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते, कृष्ण कहते कि हे भीम अपनी गदा लेकर जाओ उनको बुलाने के लिए। तो भीम इतनी बड़ी गदा लेकर पहुंच गए उन दुर्वासा मुनि आदि के पास और उनको कहा चलिए भोजन तैयार है। अभी दुर्वासा मुनि को लगा भीम के सामने बोलू कि नहीं आ सकते, पेट भर गया है, उसके हाथ में गदा देखी, एक एक भोजन नहीं खाओगे तो गदा खानी पड़ेगी। तो दुर्वासा और शिष्य डर गए, उन्होंने कहा भीम जी आप आगे चलिए, हम सारी बारात लेकर आ जाते हैं आपके घर। तो भीम तो चले गए लेकिन दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को लेकर भाग गए। इस प्रकार से भगवान सदैव पांडवों के ऊपर आने वाला जो संकट है उनसे सदैव रक्षा किया करते थे। तो ऐसे अर्जुन की भी भगवान रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं परम भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, जो वास्तव में सारे जीवों के हितेशी हैं और सारे जीवों को मुक्ति देने वाले हैं। एक बार शिवजी और पार्वती कैलाश में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्होंने पार्वती ने प्रश्न पूछा, महादेव आपके तो बहुत सारे सेवा में सारी जनता लगी रहती है, लेकिन आप ये बताइए कि संसार सागर से
मुक्ति कौन दिला सकता है, इस भव सागर से पार कौन कर सकता है। शिव जी कहते वो शक्ति मेरे पास नहीं है। ये सारे लोग मेरे पास आते हैं, धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्याम देहि, हाँ, और मैं तो सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करता रहता हूँ माला हाथ में लेकर, लेकिन ये बीच बीच में लोग आप मुझे तंग करते हैं। मुक्ति कोई देने वाला है तो शिव जी अपने पत्नी को कहते मुक्ति रेवना संशया, कि कहते हैं मुक्ति तो भगवान कृष्ण या विष्णु प्रदान कर सकते हैं, सारे जीवों को ये जगत के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कहा मैं ऐसे परम भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ जिनके बारे में सुनना एक दवाई के समान है, और जो मेरे पांडवों के रक्षक हैं और इस संसार के भव सागर से मुक्त कराने वाले हैं और मेरे प्रेम के विषय हैं। तो जैसे उन्होंने ये बताया तो शुकदेव गोस्वामी उनको वर्णन करने लगे कृष्ण कथा का। तो कृष्ण कथा की तुलना गंगा से की गई है, गंगा जैसे तीनों लोगों को पवित्र करती है, जब स्वर्ग में होती है तो उसको मंदाकिनी कहते हैं, तो वहां सारे देवता आदियों को पवित्र करती है। तो गंगा जब इस जगत में आती है तो उसका नाम भगीरथी जाह्नवी गंगा ये सब होता है, और पृथ्वी के जो पापी तापी लोग हैं उनको पवित्र करती है, और वही गंगा जब पाताल लोक में जाती है तो उसको भोगवती कहा जाता है, और वो भोगवती फिर सारे पाताल के निवासियों को पवित्र करती है। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा है श्रीमद् भागवतम है वो तीनों प्रकार के व्यक्तियों को शुद्ध करता है। एक तो है जो सोता जो सुनता है कृष्ण कथा का, जो सुनने वाला है जिसको श्रोता कहा गया है, और दूसरा व्यक्ति जो जिज्ञासु है जिसके मन में प्रश्न है, जो जानना चाहता है भगवान के बारे में, अपने बारे में, इस भौतिक जगत के बारे में जानना चाहता है, और तीसरा जो कृष्ण कथा का वर्णन करता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने जब ये वर्णन किया, शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया परीक्षित महाराज को, तो फिर परीक्षित महाराज सुनने लगे शुकदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा को। फिर शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैं आप परम भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूं, जिनकी महिमा सुनने के लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं। तो फिर उन्होंने भगवान का इस जगत में प्राकट्य कैसे हुआ उसका वर्णन करने लगे, और भगवान की सारी बाल लीलाओं का वर्णन किया। किसने वर्णन किया? शुकदेव गोस्वामी ने। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जब ये जो पृथ्वी है ये जब आसुरों के पापमय कार्यों से बोझिल हो गए थे, पापमय कार्यों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था, तो उस समय परम भगवान कृष्ण अवतरित होने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए किसी और के पास क्षमता नहीं है। तो ऐसी पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करती है, और इस सृष्टि के जो प्रमुख देव हैं ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, उनके पास जाती है। गाय का रूप क्यों धारण करती है? क्योंकि गाय के प्रति स्वाभाविक रूप से हरेक व्यक्ति के हृदय में दया है, और भगवान को गाय सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो हम उच्चारण करते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि वास्तव में परम भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के हितेशी हैं और गायों के हितेशी हैं। ऐसे परम भगवान को हम प्रणाम करते हैं या उनकी वंदना करते हैं। तो ऐसी गाय जब ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा उनको लेकर शिवजी आदि के पास गए, फिर सारे देवी देवता मिलकर इस ब्रह्मांड में जो क्षीर सागर है, इस ब्रह्मांड में कई प्रकार के सागर हैं। अभी हम इस पृथ्वी में रहते तो हमें पता है कि यहाँ लवण सागर है, नमकीन सागर है, जल है, लेकिन इस ब्रह्मांड में अलग अलग लोकों में अलग अलग सागर है। कहाँ दूध का सागर है, कहीं दही का सागर है, कहीं तेल का सागर है, कहीं सूरा का सागर है। तो उस प्रकार से क्षीर सागर है, क्षीर का मतलब है दूध, जहाँ भगवान विष्णु अपने अनंत शेष पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी देवी उनकी चरण सेवा करती रहती हैं। तो ऐसे ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर जाते हैं क्षीर सागर के तट पर, और वहां तट पर जाकर पुरुष सूक्त के द्वारा कई प्रकार से स्तुतियां की जाती हैं, जिन स्तुतियों के द्वारा भगवान आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम साधन है प्रार्थना। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रार्थना सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान की स्तुतियां करनी चाहिए। इसलिए तो शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के गीत आदि दिए गए हैं, प्रार्थना आदि दी गई है, जिनका उच्चारण करने मात्र से भगवान उस व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान का जो हृदय द्रवित हो जाता है उन प्रार्थनाओं को सुनने के बाद और अपनी कृपा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा क्षीर सागर के तट पर इन प्रार्थनाओं को सुना, तो भगवान तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा अपना जो संदेश है वो ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कराया। इस जगत के सबसे पहले जो ब्रह्मा है, जो किसी माता पिता या स्त्री पुरुष के संपर्क में आने से प्रकट नहीं हुए हैं, वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हो गए हैं। इसलिए ब्रह्मा का एक नाम हिरण्यगर्भ है। तो ऐसे ब्रह्मा ने जब ध्यान मग्न हो गए तो भगवान ने उनको संदेश प्रदान किया, कहा कि आप क्या करो, व्यवस्था करो, मैं इस जगत में अवतरित होने वाला हूं और पृथ्वी का भार हरण करने वाला हूं। तो उस समय ब्रह्मा अपने ध्यान समाधि से बाहर आते हैं और सारे देवताओं को ये आदेश प्रदान करते हैं कि भगवान कृष्ण जो परम भगवान है इस जगत में अवतरित होने वाले हैं, तो ये सारे देवताओं आप अलग अलग यदुवंश के परिवारों में जन्म ग्रहण करो, ब्रज में जन्म ग्रहण करो, मथुरा में जन्म ग्रहण करो, क्योंकि बहुत जल्दी ही भगवान कृष्ण इस जगत में अवतरित होने वाले हैं। तो पृथ्वी देवी और ये सब वापस आते हैं और फिर भगवान कृष्ण इस जगत में अवतरित होने वाले हैं, तो जिसके लिए है तुरंत सारे देवी देवता अलग अलग परिवारों में जन्म ग्रहण करते हैं। और उस समय हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों में वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था, जो शूरसेन के पुत्र है वसुदेव, और जब उनका विवाह हुआ, विवाह के उपरांत कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए निकल ही रहे थे और वो जो रथ है उस रथ का सारथ्य कर रहे थे, रथ को हाँक रहे थे और चलते हुए बहुत सारा आनंदमय वातावरण था, मंगलमय वातावरण था। और उसी क्षण वसुदेव और देव के रथ के पीछे बैठे थे, कंस बड़े उत्साह से रथ को चला रहा था, लेकिन अचानक वह एक ध्वनि को सुनता है। किस चीज को सुनता है? एक आकाशवाणी को सुनता है। अभी लोग भी अपने घरों में आकाशवाणी सुनते हैं, रेडियो की आकाशवाणी, लेकिन वो आकाशवाणी इतनी भयभीत करने वाली नहीं है, लेकिन ये आकाशवाणी जैसे इन्होंने सुनी तो उसका भय और बढ़ गया। आकाशवाणी क्या थी कि अरे मोर कंस, जिस बहन का और वसुदेव का रथ हाँक के ले जा रहे हो, उसकी कोख से प्रकट होने वाला जो आठवां बालक है वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अभी मृत्यु शब्द सुनना किसी को अच्छा लगता है? नहीं। तो मतलब आप कितने ही बड़े हो जाओ, आपके पास कंस जैसा बड़ा कारोबार क्यों ना हो, ऐश्वर्य आदि क्यों ना हो, लेकिन सारी चीजें हमें त्यागनी होती है जब मृत्यु आ जाता है हमारे सामने। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शरण नहीं ग्रहण करता उसको भी मैं दर्शन देता हूं, और जो मेरी सेवा करता है, शरण ग्रहण करता है, उसके पास भी मैं जाता हूं, लेकिन अलग अलग रूपों में पहुंचता हूं। तो अर्जुन कहते प्रभु बताओ कौन सा रूप है आपका, जो आपकी शरण नहीं ग्रहण करते उनके पास आप पहुंचते हो? तो कृष्ण कहते मृत्यु सर्वहर शाहम, के अर्जुन मृत्यु के रूप में जाता हूं मैं उनके पास और उनकी सारी चीजों को हरण कर लेता हूं उनके न चाहते हुए भी। इस प्रकार से कंस जैसा जो असुर है, इतना शक्तिशाली सामर्थ्यवान व्यक्ति भी अपने मृत्यु से भयभीत है। और सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के जो पिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु जब अपनी भ्रुकुटी हिलाता था तो सारे देवी देवता कांपने लगते थे, सारे उनकी सेवा के लिए तत्पर होते थे। लेकिन ऐसे हिरण्यकश्यपु भी ब्रह्म देवताओं के 60,000 साल के लिए तपस्या करता है और मांगता क्या है, मुझे किसी के द्वारा मृत्यु ना हो। मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं, आज का जो विज्ञान है वो भी प्रयास कर रहा है, लेकिन वो असंभव है ये चार चीजों पर विजय प्राप्त करना। तो ऐसे कंस भयभीत हो गए मृत्यु के द्वारा, जैसे एक व्यक्ति था, क्योंकि हम मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक व्यक्ति को पता चला कि मृत्यु आने वाली है, उसने सोचा अच्छा मुझे भी यमराज लेने के लिए आ जाएंगे। तो उसका बड़ा कोठी था, हाँ जो ड्राइंग रूम था बड़ा बड़ा था, तो उसने अपने जैसे ही सारे स्टैचू पुतले बना लिए, मूर्तियां बना लिया अपने जैसे दिखने वाले, सारे मूर्तियों को लगा के रखा 50-60 मूर्तियां, और बैठ गया उन मूर्ति के समान ही बैठ गया। अभी यमराज आ गए, यमराज आए तो उन्होंने देखा अरे सारे तो एक जैसे, भी किसको लेके जाओ। यमराज अपने लिस्ट रोज लिस्ट लेकर आते हैं, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, कूड़ा मार्केट में जाते हो सामान खरीदने, तो लिस्ट लेके जाते हो। तो यमराज और यमराज के दो जब निकलते अपने ऑफिस से बाहर जाते तो एक लिस्ट लेके चलते हैं, सुबह किसका नंबर है, दोपहर को किसका है, शाम को किसका है, मध्य रात्रि में किसका है, पूरा लिस्ट होता है। उन्होंने देखा ये आज तो इनका नंबर है, तो गए तो देखा ये तो सारे एक जैसे दिखते हैं, किसको उठा लो, तो भी चतुर होते हैं। तो उनके पास एक घास का तिनका था, घास का तिनका लिया, वो मूर्ति के एक कान में डाला, एक कान में डाला तो दूसरे कान से निकल के बाहर आया। उसको लगा रे क्या अद्भुत चीज बनाई है, देखते तो सारे एक जैसे हैं, और कान की भी इतनी सूक्ष्म छेद आ गई है, इस कान से डाला तो उस कान से बाहर। तो वो जो यमराज और उनके जो शिष्यगण है यमदूत, ये आपस में चर्चा करने लगे, जिसने भी ये मूर्तियां बनाई है ना, सही में क्या व्यक्ति होगा, क्या उसकी बुद्धि होगी, क्या उसकी कुशलता होगी। अभी उसको लगा कि किसको अपने प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता, कोई हमारे बारे में दूसरे रूम में बात करना शुरू करे तो हमारे कान बिल्कुल हाथी के कान तरह बड़े हो जाते हैं, तो हम हमेशा अपनी गुणों को सुनना अच्छा लगता है, प्रशंसा को सुनना अच्छा लगता है। तो फिर उनमें से जो मूर्ति थी, जो व्यक्ति बैठा था ओरिजिनल प्रमुख, उसने हाथ ऊपर किया, मैंने बनाया है। तो उनका कान पकड़ा यमराज ने, चलो आपका भी ले चलते हैं। इस प्रकार की स्थिति है, शास्त्र कहते एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, यमराज सुबह सुबह आए, लेट नाइट सेवा थी, 24 घंटे दिन रात सेवा है उनके पास, हमारे पास हम तो ऑफिस दिन में जाते हैं, रात में आजकल कॉल सेंटर शुरू हो गए, लेकिन ओरिजिनली यमदूत दिन रात काम करते रहते, दिन में भी उतना भीड़ है उनके पास, रात्रि में भी उतनी संख्या है, जनसंख्या को कम करने में लगे पड़े हैं। तो आए सुबह सुबह बहुत थके हुए थे, एक लाला जी के पास आ गए, अपना बिजनेस खत्म करके सुबह वो बैठे थे, रात भर नींद नहीं आ रही थी, बहुत सारी दवाइयों का पहाड़ घर में बनाया था। सुबह उठे तो देखा दरवाजा खटखटाया, कौन आए बाहर, देखा उसमें से कोई अलग से व्यक्ति दिख रहा है, देखा यमराज आए हैं। अभी भारत की संस्कृति है, अतिथि देवो भव, जो भी आपके घर में आए उसको आप स्थान प्रदान करते हैं। जैसे उनको बिठाया, उन्होंने कहा बताइए क्या क्या सेवा, आप क्या लेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं लेंगे, आपको लेने आए हैं, लेंगे तो बाद में, लेकिन कहा नहीं हमारी संस्कृति है, पहले कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए, कुछ तो ले लीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, और उसने सोचा कि सारे जो नींद की दवाइयां हैं वो ब्रेकफास्ट में डाल दी, और यमराज को खिला। यमराज ने कहा देखो मैं हर जगह जाता हूँ, कोई मुझे खाने के लिए पूछता भी नहीं है, सब मेरे नाम से गालियां देते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे हो, मेरी सेवा करने के लिए तत्पर हो। तो यमराज ने खाया, पूरा ब्रेकफास्ट लिया, और उनको नींद आ गई, अगर लेट नाइट सेवा चालू थी उनकी, तो नींद आए सो गए। और तब तक उनके हाथ में जो लिस्ट था, उस लिस्ट को ये व्यक्ति ने उठाया, देखा अरे लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम लिखा हुआ है, तो घर में कंप्यूटर था, प्रिंटर था, तुरंत लिस्ट को चेंज कर दिया और जो शुरुआत में अपना नाम था अंतिम लिख दिया और रख दिया वैसे कि वैसे भी यमराज उठे कहते कि आपका बहुत धन्यवाद, आज मैं तो इतने लोगों को लेने आया हूँ, लिस्ट में तो आपका नाम है, लेकिन चलो अभी आपके ऊपर थोड़ा छुट्टी देते कुछ घंटे, अभी क्या करते हैं नीचे से शुरू करते लाइन। तो उसको फिर उसी का नंबर आ गया। तो मतलब हम जो मर्जी प्रयास करें, तो कंस के साथ ऐसे ही था, कंस अपने मृत्यु को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहा था कि अपनी बहन को नहीं देखा, स्वार्थ। हाँ, इस जगत में कोई किसका नहीं है। हाँ, जब पेड़ के ऊपर फल खत्म हो जाते हैं तो पंछी चले जाते हैं, गुरु से जब शिष्यगण या विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते तो उनको पूछते नहीं है बाद में, माता पिता से हम बड़े हो जाते हैं, सीखते सब कुछ करते हैं, विदेशों में जाके सेटल्ड हो जाते, उनका स्मरण नहीं करते। तो उसी प्रकार से इनके साथ हैं। जिस बहन के प्रति अभी 15 मिनट पहले इतना प्रेम उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था, उस बहन को मारने के लिए तुरंत तलवार निकालता है, उसके बाल पकड़ता है, अभी अभी हल्दी आदि से शुभ संस्कार हुए थे, विवाह संस्कार, मारने के लिए तत्पर है। तो ऐसे कंस उनको मारने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, तो वसुदेव उनकी रक्षा करते हैं। वसुदेव कहते हैं अरे मृत्यु से मृत्यु, क्योंकि जन्म जब होता है तो जन्म अकेला जन्म नहीं लेता, जन्म के साथ दो चीजें जन्मती हैं, एक जन्म भी जन्म लेता है और मृत्यु भी जन्म लेती है। तो वास्तव में वसुदेव ने उस समय कहा कि हम जितने दिन जीते जा रहे हैं वास्तव में हम मरते जा रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे, हमें लगता है कि मैं बढ़ रहा हूं, आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है, हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा हे कंस, आपको तो देवकी से कुछ भय नहीं है, देवकी के आठवें पुत्र से भय है, तो आठवें पुत्र का जन्म होगा नहीं होगा हाँ किसको पता, लेकिन उससे पहले क्यों अपने बहन की आत्मा के लिए तत्पर हो रहे हो। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंधा हो जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है, अंधा अज्ञानता के कारण। और फिर ये इतने साधु वृत्ति के थे वसुदेव, वसुदेव कहते कि ठीक है यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं ये वचन देता हूं कि देवकी का जो आठवां पुत्र है वो आपके पास लाकर दे दूंगा। तो कंस आसुरी बुद्धि का था लेकिन फिर भी वसुदेव जैसे संत या सज्जन व्यक्ति के वाणी पर उसका विश्वास था, वो जानता था कि ये वसुदेव भक्त है और वसुदेव जो वचन देंगे वो अपने वचन से विपरीत कार्य नहीं करते हैं। तो भी वसुदेव किसी भी प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं। और फिर जैसे ही उनका जन्म होता है, देवकी के द्वारा पहले बालक का जन्म होता है, तो वसुदेव लाकर उनके पास देते हैं और उनके पास देते हैं कंस के पास। कंस को थोड़ी सी दया आती है। क्या दया आती है कंस को कि नहीं नहीं अरे इससे तो मुझे कुछ भय नहीं है, वो आठवां बच्चा है ना, उसको मारते हैं तो वापस भेजते हैं। लेकिन फिर कंस के जो संग था, कंस के आसपास के जो मित्र थे वो साधु प्रवृत्ति के नहीं थे, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे। तो जिस प्रकार से हम संग करते हैं उसी प्रकार का हमारी चेतना या भावना या इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार से हमारा चरित्र बनता है। तो कंस असत व्यक्तियों का संग कर रहा था जिनके कारण कंस ने तुरंत सोचा कि नहीं नहीं अभी क्या करना होगा, मुझे जल्द ही इन बालकों को मारना होगा। तो बल्कि भगवान जो नारद हैं वो सोच रहे थे कि कृष्ण जल्दी प्रकट हो जाए। तो कंस अभी बिल्कुल शांत हो गया था, तो एक दिन नारद जाते हैं उनके महल में, कहते अरे नारद ये विष्णु है ना ये कभी भी कुछ कर सकता है। हाँ, तो वो उन्होंने कहा नहीं 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 वो आठवें बालक के लिए बोला है। तो नारद अपने हाथ में एक फूल लेके जाते हैं, एक फूल जिसमें आठ पंखुड़ियां थी, कहते कंस गिनो जरा। तो कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहते यहां से फिर से गिनो 1 2, कहते देखो। तो कंस को इतना भ्रमित कर दिया नारद ने, कहा कि ये जो देवतागण है भगवान विष्णु आदि है वो कभी भी पहले हो सकते आठवें हो सकते, कुछ भरोसा नहीं है। ये आठ पंखुड़ी के समान, तो फिर कंस और तत्पर हो जाता है, बल्कि इनकी इच्छा थी कि जल्दी भगवान प्रकट हो। तो भगवान कंस अलग अलग बालकों का वध करता है, छह बालकों का वध करता है, और सातवें भगवान आपने जो योग माया शक्ति है उनको आज्ञा देते हैं कि ये जो देवकी है उन देवकी के गर्भ में मेरा जो अंश है, सौ अंश है, बलराम के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो आप क्या करो, देवकी के गर्भ से वो जो सातवा गर्भ है उसको ले लो और स्थानांतरण करो रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी उस समय वहां निवास कर रहे थे, वृंदावन में निवास कर रहे थे नंद महाराज के यहाँ। और इस आसुर ने, कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया था, कारागृह में बंद किया था, जहां अलग अलग बालक का जन्म होता था और वसुदेव उनको सुपुर्द करते थे, अलग अलग बालकों की वो हत्या करता था। और आठवें जो बालक प्रकट होने से पहले भगवान स्वयं ही कहते हैं योग माया का को मेरे गर्भ को, देवकी के गर्भ को स्थानांतरित कीजिए, तो योग माया वो कार्य करती है। तो सातवें गर्भ, बल्कि गर्भवती थी देवकी, लेकिन ऐसे लगा कि शायद उनका गर्भ गिर गया है या विनाश हो गया है। तो फिर भगवान स्वयं ही आठवें बालक के रूप में प्रकट होते हैं और योग माया को कहा कि जिस समय मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा उसी समय आप नंद महाराज और यशोदा के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ। तो इस प्रकार से वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं। तो भगवान का प्राकट्य हमारे प्राकट्य के समान नहीं है कि भगवान वसुदेव के मन में पहले प्रकट हो जाते हैं, वसुदेव के मन से कहां चले जाते हैं, देवकी के मन और हृदय में प्रकट होते हैं। और हृदय से वसुदेव, देवकी के हृदय से, ऐसे नहीं कि देवकी को सर्वसाधारण श्री के बातें प्रसूति हो गई और फिर भगवान ने जन्म लिया, नहीं, ये तो हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए लागू होता है। भगवान इस जगत में आते हैं तो भगवान इन सारे नियमों से बंधे नहीं है, भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं उनके सामने उस कारागृह में। और कैसे प्रकट होते हैं भगवान कृष्णा, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किया हुआ था, जिनके घुंघराले बाल थे, मुकुट और मोरपंख आदि शोभायमान था, गले में वैजंती मालाएं उन्होंने धारण किए थे, पीताम्बर वस्त्र आदि उन्होंने पहना था, इस रूप में भगवान स्वयं ही सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं देवकी और वसुदेव के सामने। और देवकी वसुदेव उनको प्रार्थना करने लगती है, वसुदेव उनकी प्रार्थना उनको प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। और देवकी का तो हृदय माता का हृदय है, बल्कि भगवान उनके सामने बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, फिर भी वो सोचती है कि आपको कंस से भय है, माता बच्चा बड़ा भी हो जाए तो उसको हमेशा छोटा ही लगता है, वो हमेशा उसका ध्यान रखना चाहती है, उसके उसका हित आदि सोचती रहती है। तो उसी प्रकार से जो देवकी है वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और इस प्रकार से सोच रहे थे, तो फिर भगवान कहते कि मुझे कहां ले चलो, नंद महाराज के घर में ले चलो। और वहां नंद महाराज के घर में एक प्रकार से योग माया पुत्री के रूप में प्रकट हुए थे। तो जैसे भगवान ने आदेश दिया उसी समय वसुदेव कृष्ण जो छोटे से बालक हैं उनको लेकर निकल पड़ते हैं। बाहर बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी, सारे जो कारागृह के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वसुदेव कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए बाहर आते, यमुना को क्रॉस करके ब्रज में पहुंचते हैं और ब्रज में जाकर नंद महाराज के गृह में जाते हैं, जहां यशोदा माता ने मध्य रात्रि के समय में एक बालिका को जन्म दिया था। और जाकर वहां क्या करते हैं, वहां इस बालक को रखते हैं और उस बालिका को लेकर मथुरा आ जाते हैं। जैसे मथुरा आए तो दूसरे दिन हम बालक की रोने की आवाज आ गई, तो कंस तो हमेशा एक ही आवाज सुनने के लिए तत्पर रहता था, बच्चों की आवाज रोने की, ओ अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया है, चलो अपनी सारी सेना को लेकर कारागृह में लेता था और बालक को मार देता था। तो उसी समय जब गया तो देखा बालक आठवा तो बालक बोला गया था, लेकिन ये तो बालिका ने जन्म लिया है। तो उस बालिका को वसुदेव जो कंस है वो अपने हाथ में लेते हैं और उनको ऐसे ऊपर उठाकर पत्थर के ऊपर मारने के लिए जैसे तत्पर होते हैं, वो बालिका योग माया शक्ति भगवान की उनके हाथ से घसीट कर निकल जाती, आकाश में दश भुजा धारण करके देवी प्रकट होती हैं और वो कहते कि अरे मूर्ख, हाँ परम भगवान कृष्ण ब्रज में प्रकट हो गए हैं, ब्रज में मिस और वो उनका प्राकट्य हो गया है और आप विनाश की तैयारी करो। तो इस प्रकार से तब से कंस बहुत अधिक चिंतित होता है, हाँ क्योंकि भय किस चीज का है, मृत्यु का। भयभीत कौन व्यक्ति होता है इस संसार में, जो व्यक्ति भगवान के अलावा किसी और वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से प्रेम करने लगता है, आसक्त हो जाता है। मैं ये बोतल से प्रेम करूं, आसक्त हो जाओ और ये बोतल हमेशा भय रहेगा कि कोई इसको लेना जाए, ये गुम ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो लेकिन जब हम भगवान के अलावा, प्रहलाद कहते कि भगवान के अलावा हमारा मन किसी और वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान आदि में आसक्त हो जाता है, लगाव हो जाता है बड़ा गहरा, तो हम सदैव भयभीत रहते हैं। ये भय का कारण है और आसक्ति से हमारे हृदय में भय और द्वेष उत्पन्न होता है। तो ऐसे जो कंस थे उनके पास यही एक चीज थी, वो अपने शरीर से इतने आसक्त हो गए थे कि ये शरीर ना चला जाए, मृत्यु नहीं चाहिए मुझे, जीवित रहना है, इसके प्रति आसक्ति थी, जिनके कारण जीवित रहते हुए भी वो सदैव भयभीत थे। तो ऐसा जीवन क्या लाभ का, यदि व्यक्ति जीवित रह के सदैव 24 घंटे भय की अवस्था में है तो ऐसा जीवन उचित नहीं है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, पक्षी हमेशा भयभीत रहते हैं, कुत्ते को कुछ डालो और डर के खाता है और भागता है, भयमय जीवन है। तो इसलिए कंस हमेशा भगवान के बारे में सोचता था, लेकिन विपरीत रूप से। तो जब भगवान ब्रज में पहुंचे तो सुबह के समय में यशोदा माता ने देखा, यशोदा माता और नंद महाराज वृंदावन में बहुत साल उनको बीते थे और अभी वो महावन यमुना के किनारे गोकुल में निवास कर रहे थे। उनसे पहले उनके जो पूर्वज परजन्य आदि नंदगांव में रहा करते थे नंदेश्वर पर्वत के ऊपर, लेकिन वहां से वो महावन गोकुल में आए थे और जहां भगवान कृष्ण उनको बालक के रूप में प्राप्त हुए थे। और यशोदा माता ने सुबह सुबह जैसे देखा, अरे मैंने एक बालक को जन्म दिया है, उनकी आयु काफी हो गई थी, तो वो देखने लगे अपने बालक को। पहले लगा वो देखते क्या है, कृष्ण को देखा तो अपना प्रतिबिंब कृष्ण में नजर आने लगा। यशोदा माता डर गई, ये क्या हो गया है। यशोदा माता ने सोचा ये कोई भूत पिशाच खेचरी आदि तो नहीं आए। यशोदा माता नरसिंह आरती गाने लगी, नरसिम्हा नरसिम्हा, हाँ नरसिम्हा देव को पुकारने लगे। तो फिर थोड़ी देर में देखते कि अरे ये मेरा ही तो बालक है ना, ऐसा सुंदर बालक जो नील मणि के समान उनके सामने लेटा हुआ था और वो उनको स्पर्श करने के लिए अपने हाथ अपनी उंगली आगे बढ़ा रहे थे और वो डर रहे थे, हाँ क्योंकि कृष्ण का जो श्यामल वर्ण है और उनको कहा जाता है श्यामल अंगो कोमल अंगो, भगवान कैसे श्यामल अंग है उनका और बहुत कोमल है। शास्त्र कहते कि आपको पता करना है कि भगवान कृष्ण का देह कितना कोमल है तो तमाल वृक्ष का जो नया नया आया हुआ पत्ता है उसका स्पर्श कीजिए, ऊपर जो होता है इतना सॉफ्ट होता है, शास्त्र कहते कि उसके भांति कृष्ण मधुर या कोमल है। तो उनको लगा कि कृष्ण को मैं हाथ लगाऊंगी तो कृष्ण के शरीर में मेरी उंगलियां चली ना जाए, जैसे मक्खन बनाती है माता है घर में, मक्खन को स्पर्श करो तो क्या उंगली अंदर चली जाती है। तो कृष्ण कैसे है, मक्खन के समान है, मधुर भी है और बहुत कोमल भी है। तो ऐसे भगवान कृष्ण को जब स्तनपान करने के लिए यशोदा सोच रही थी, लेकिन उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। तो सारी गोपिकाएं उस समय आए उस स्थान में और कहने लगी जोर जोर से, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से सारा ब्रज आनंद से भर उठा। तो ये जो वृंदावन है वो भगवान का नित्य ग्रह है, नित्य स्थान है। भगवान अपने आध्यात्मिक जगत वैकुंठ या गोलोक वृंदावन को छोड़कर इस जगत में आते हैं तो वो अपने धाम को ही जगत में लेकर आते हैं और उसी धाम को धाम पर अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। हम भगवान को सर्वाधिक प्रिय अपना धाम ब्रज भूमि है, वृंदावन है। जैसे भगवान ने जब सारे तीर्थों को बुलाया, सारे जगत के तीर्थ आ गए और सोचा इन तीर्थों में उन्होंने क्या किया, जो प्रयागराज है उसको एक पदवी दे दी कि आप क्या हो आज से तीर्थराज। जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ है, पृथ्वी में तीर्थ है, उनमें सर्वश्रेष्ठ आप हो, आप सबके राजा हो। सारे तीर्थ आएंगे और आपको प्रणाम करेंगे, वंदना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपको सब कुछ अर्पित करेंगे। तो अभी जो तीर्थराज है थोड़ा उसको लगा अच्छा इतना बड़ा पद मुझे मिला है, व्यक्ति को थोड़ी पोजीशन मिल जाती है ना तो वो छाती सीना तान के सोचने लगता है, अहंकार बढ़ने लगता है। तो उस समय नारद आए, नारद ने सोचा इनका अहंकार का गुब्बारा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, ये फूलते जा रहा है। हाँ, ये भूल गया कि मेरे स्वामी कौन है, कृष्ण है। तो उन्होंने सोचा चलो इसको थोड़ा पिंच मारता हूं। तो गए, कहा अरे तीर्थराज, आइए आइए महर्षि नारद, देवर्षि नारद आइए बैठिए। कहते मैंने न्यूज सुनी थी तुम तीर्थराज बने हो आजकल, जैसे कहते ना आप ये बने हो, ये पोजीशन मिली है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ सब लोग तुम्हें प्रणाम करने आते हैं लेकिन ये ब्रज भूमि वृंदावन आता है क्या तुम्हें प्रणाम करने। उन्होंने कहा अरे नारद क्या बात बोली आपने, ये तो नहीं आता। तो कहते जाओ कृष्ण के पास, ऐसा कैसा राजा बनाया, सारे बाकी लोग आते हैं वृंदावन क्यों नहीं आता मुझे प्रणाम करने। तो तीर्थराज जाते हैं उनके पास, कृष्ण को कहते हैं कि आपका ये जो वृंदावन है ब्रज भूमि है ये मुझे प्रणाम अर्पित नहीं करता है, मेरी स्तुति नहीं करता है, मेरी प्रशंसा नहीं करता है। जैसे तीर्थराज प्रयाग के मुख से भगवान कृष्ण ने ये शब्द सुने, कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण वृंदावन से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो निवासी हैं वो भगवान के लिए प्राणों से अधिक प्रिय हैं और ब्रजवासियों का जो प्रेम है इस जगत में सर्वोत्कृष्ट प्रेम भगवान के प्रति है उनका। इसी कारण से भगवान ने अपने धाम का नाम अपने भक्त के नाम से रखा है वृंदा। भगवान के भक्त कौन है? वृंदा तुलसी, जिसके नाम से भगवान ने वृंदावन नाम रखा, इतना प्रिय। तो ऐसे भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं और जैसे ही नंद महाराज आदि को पता चलता है कि मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया है तो नंद महाराज आनंदित हो जाते हैं और जो दासी या सेविका उनको बताने आए थी नंद महाराज सुबह सुबह कहां थे, गवों की सेवा में लगे हुए थे, वहां उनको कहा कि आपके ग्रह में एक पुत्र ने बालक ने जन्म लिया है, आपके घर में आनंद ने जन्म लिया है, तो वो आनंदित हो गए। उन्होंने अपने गले की जो भी माला है और सारी चीजें दे दी उस दासी को, दौड़ते हुए आए और कृष्ण के मुख कमल को देखा, कृष्ण के सौंदर्य को उन्होंने पिया और फिर उस दिन कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। सारे ब्रज के निवासी वहां एकत्रित हो गए और हर जो स्त्री है पुरुष है अपने आप को सुजित सुसज्जित करके वहां आ गए थे नंद महाराज के घर में। दूध दही मक्खन और कई सामग्री लेकर पहुंचे थे, गोपिकाएं अपने आप को सज धज कर वहां पहुंच गई थी। पहुंचने के उपरांत सब एक दूसरे पर मक्खन दूध दही फेंके जा रहे थे और कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्णा जोर से बोलिए, तो इस प्रकार से सब लोग आनंद मना रहे थे भगवान के जन्मोत्सव का, जिसको जन्माष्टमी कहा जाता है। तो ऐसे भगवान वो नंद उत्सव का दिन है वास्तव में, दूसरा दिन। तो ऐसे नंद महाराज बहुत आनंदित थे और फिर नंद महाराज कुछ कारण के लिए, कुछ कार्य के लिए वहां चले जाते हैं, कंस का टैक्स देने के लिए मथुरा जाते हैं। और मथुरा जब वो गए, मथुरा पहुंचने के बाद कंस का टैक्स आदि पे करते हैं, वहां उनको वसुदेव मिलते हैं और वसुदेव ये सारी चीजें जानते हैं कि मेरे दोनों पुत्र, मेरे जो दोनों लाला है वो कहां निवास कर रहे हैं, वृंदावन में, ब्रज में निवास कर रहे हैं। तो वसुदेव इस बात को गुप्त रखे थे, वसुदेव इस बात को प्रकट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे वसुदेव ने उनको कहा कि आप तो यहां आ गए हैं, वहां कुछ अनुचित हो सकता है, आप जल्दी वापस जाइए ब्रज में। हाँ, तो वसुदेव की बात सुनकर नंद महाराज जल्दी वापस जाते हैं। तो जाने से पहले यहाँ क्या घटना घटित हुई थी, अभी अभी कुछ ही दिन हुए थे कृष्ण का प्राकट्य होकर, केवल 6 दिन हो गए थे, कितने 6 दिन। तो न जो कंस है, जैसे उनके मुख से सुना था, देवी के मुख से सुना था कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, तब से वो मारने के लिए तत्पर था। उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि जहां कहीं अभी अभी बच्चों ने जन्म लिया है उनको मारा जाए, उनकी हत्या की जाए। तो उसके लिए वो ढूंढ रहे थे बच्चों को मारने के लिए कौन एक्सपर्ट है, पूतना। कौन है? पूतना का काम है, जिसका दूसरा नाम है खेचरी। खे का मतलब है आकाश, चरी का मतलब है विचरण करती है। तो जो आकाश में सदैव विचरण करती है, ऐसी पूतना को चुना गया और पूतना आ गई कंस, कंस को, कंस ने कहा कि आप जाइए और वहां आप ढूंढ लीजिए, बालकों का वध कीजिए। तो जो पूतना है वो अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते हुए ब्रज में आती है। उनको पता चला कि कंस के जो शत्रु हैं, कंस के जो मृत्यु हैं, वो साक्षात ब्रज में नंद महाराज के घर में प्रकट हुए हैं या हुआ है। तो फिर वो तो एक आसुरीन थी, राक्षसी थी, उनका विकराल भयावह रूप था, लेकिन ऐसी पूतना जो अपना रूप बदलने का सामर्थ्य या शक्ति रखती थी, वो जैसे ब्रज में पहुंची, पहुंचकर उन्होंने देखा कि ब्रज के सारे निवासी कुछ ना कुछ कार्यों में व्यस्त हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, सदैव भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो इन सब चीजों का लाभ उठाकर वृंदावन के वन में या गोकुल में उन्होंने प्रवेश किया और अपने रूप का परिवर्तन किया और इतने सुंदर श्री के रूप में वो प्रकट हो गई। उसने सोचा कि उस बालक को आज मैं मार के रहूंगी, अपने स्तनों को ऐसे उसको दूध पिला के मारूंगे, अपने स्तनों को हलाहल इतना जहरीला विष लगा देती है। और वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके हाथ में कमल पकड़ते हुए निकल पड़ती है गोकुल की गलियों में, गोकुल के रास्ते में चलने लगती है। तो गोकुल के जो ग्वाले हैं, सारी स्त्रियां हैं, वो पूतना की सुंदरता के प्रति आकृष्ट हो जाते, कहते हैं अरे ये रूपवती कहां से आ गई है। और जैसे जैसे नंद महाराज के महल के नजदीक ये पूतना पहुंची तो रोहिणी और यशोदा भी उनकी स्तुति किए बिना रह नहीं पाई। यशोदा माता ने कहा देखो साक्षात लक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने के लिए आई है। और बल्कि यशोदा हमेशा सोचती थी कि कोई ना कोई आता रहता था बालक को देखने के लिए, बहुत लंबे समय के बाद बालक ने जन्म लिया था। तो फिर पूतना को देखकर वो कहती कि अरे साक्षात लक्ष्मी आई है और वास्तव में ऐसे लक्ष्मी समान श्री का आशीर्वाद मेरे पुत्र के लिए बहुत लाभप्रद होगा। हाँ, लेकिन उनको पता नहीं है ये ऊपर से क्या है, एक सुंदर रूपवती स्त्री है लेकिन अंदर बहुत गंध भरा पड़ा है। तो ऐसी पूतना जब प्रवेश करती है उनके ग्रह में, तो भगवान कृष्ण अपने पालने में या बेड में लेटे हुए थे और भगवान जब देखते हैं कि मुझे मारने के लिए ये पूतना आई है। पूतना तो वैसी है कि जैसे पूतना सोच रही थी कि कैसे मैं इनको मारूं, तो जैसे वो अंदर प्रवेश किया पूतना ने, तो उन्होंने सबसे पहले दृष्टि बालक कृष्ण के ऊपर डाले। देखते ही उनको लगा ये तो सामान्य बालक नहीं है, ये तो आग है, जो आग राख से ढकी होती है, भस्म से ढकी होती है, ऐसा ये बलखता बच्चा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। तो ऐसे उतना जब ये सोच रहे थे तो भगवान ने क्या किया, उनको देखकर अपनी जो आंखें हैं वो बंद कर ली। तो शास्त्र कहते हैं, अलग अलग आचार्य कहते हैं कि भगवान ने कई कारण है पुत्रा को देखकर उन्होंने आंखें बंद की। भगवान ने सोचा कि मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया हूँ, आसुरों का विनाश करने के लिए आया हूँ, लेकिन पहले किसी को मुझे मारने की बारी आई है तो किसको मार रहा हो, एक स्त्री को मार रहा हूँ। भगवान बिल्कुल अपनी आंखें बंद करने लगते हैं और भगवान सोचते हैं, फिर और भी कारण देते कि इसलिए भी उन्होंने अपनी आंखें बंद की कि मैं इसको मारूंगा ना तो इतनी पीड़ा होगी इस पुतना को जो पीड़ा मेरे आंखों से देखी नहीं जाएगी। जैसे कुछ होता है ना, दवाई कड़वी होती है, माँ बच्चे का नाक पकड़कर पिलाती है, लेकिन माँ तड़पती भी है, बच्चे को क्या हो रहा है उसके सामने कष्ट हो रहा है। तो वैसे चीज भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि मैं इसको मारूंगा तो इतना तड़पेगी, कष्ट उठाएगी, पीड़ा होगी, जो सहन करना इसके लिए कठिन होगा, जिसको मैं देख नहीं पाऊंगा, जिनके कारण भगवान अपनी आंखें बंद करती हैं, भगवान अपने आंखें बंद करते हैं। तो इस प्रकार से पुतना क्या करती है, भगवान को उठाती है, अपने गोद में लेती है, गोद में लेकर सोचती है कि अभी इसको स्तनपान कराती हूँ। तो खेलते खेलते उनके घर से बाहर आंगन में लाती है। भगवान बहुत चतुर है, मारना है तो घर के अंदर नहीं, कहा घर के बाहर, घर टूट जाएगा, वो अपना असली रूप प्रकट करेगी तो इतना विशाल रूप, आनंद महाराज का भवन बैठ जाएगा वहां सारा। भगवान ने कहा चलो अभी छोटे बालक के लिए इतना बड़ा खिलौना है। हा? नंद महाराज कंस कौन है, भगवान के मामा है। तो अभी तो भगवान जो भांजा है एक प्रकार से, तो उन्होंने जन्म ग्रहण किया है तो मामा कुछ ना कुछ खिलौने भेजता रहता है। तो पहला खिलौना जो भेजा वो कौन सा था, पुतना। भी कुछ होता है ना, किसी का बर्थडे होता है तो हमारे जो रिश्तेदार वगैरह बड़े बड़े खिलौने लेके आते हैं, आजकल तो रिमोट वाले खिलौने आ गए बड़े बड़े। तो वैसे ही मामा स्वयं नहीं आए लेकिन उन्होंने खिलौने को सीधा भेज दिया था, कुरियर किया होगा, कुरियर काम। तो खिलौना आ गया, भगवान उस खिलौने के साथ खेलने के लिए चलो घर में आनंद नहीं आएगा खेलने में, कहा आंगन में बाहर खुले वातावरण में। तो पुतना को ले जाते, पुतना अपना कार्य करना शुरू करती है। उसकी जो घृणित इच्छाएं थी, अपने स्तन को जो उसने जहर लगाया था, कई सारे बलवान लोग उसका स्पर्श करने मात्र से मर सकते थे, तो वो जो स्तन है भगवान के मुंह में जैसे देती है, भगवान उसके दूध के साथ उसके प्राण भी चूस लेते हैं। और जैसे भगवान ने उसके प्राण चूसना शुरू किए है, जैसे हम अपना गला दबा लें तो कितना कष्ट होता है, तड़पने लगते हैं, जहां कृष्ण उसकी प्राण शक्ति को चूस रहे थे और उस विपदा को, उस भयावह पीड़ा को वो सह नहीं पा रहे थे, और जिसके कारण वो अपना जो लक्ष्मी का जो रूप है वो छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। असली रूप में आते और कहते छोड़ो छोड़ो, भगवान कहते आप दूध भोग लगाने के लिए लाए थे, अभी अभी तो भोग लगाया है, थोड़ा पीने दो, इतना जल्दी क्यों भोग हटा रहे। जैसे अभी होता है ना घर में, लोग भगवान के सामने भोग का थाली रखते हैं और खुद को खाना होता है तो जल्दी 2 मिनट में निकाल कर खत्म, लेकिन भगवान कहते अभी इतना, तुम इतने दूर से दूध लेके आए हो भोग लगाने के लिए, और अभी अभी तो भोग लगाया, मैं अभी शुरू ही कर रहा हूं, तुरंत वापस ले रहे, नहीं नहीं रुको रुको रुको। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने देखा कि उसका भयावह रूप प्रकट हो गया, और वह सब कौन देख रहे हैं, पूरे ब्रजवासी देख रहे हैं, यशोदा माता देख रही है, रोहिणी देख रही है। यशोदा माता बहुत दुखी हो रहे थे, उसने देखा ये क्या, अभी तो लक्ष्मी थे, अभी ये क्या प्रकट हो गए। हाँ, तो वैसे ही जैसे उन्होंने भयावह अपना रूप प्रकट किया तो भगवान ने वहां भी उनको नहीं गिराया, भगवान ने साथ चलो बाहर, गांव से बाहर जहां लोग रह रहे वहां से बाहर चलो, अभी भगवान के भक्त के सारे घर थे, किसी भक्त के घर में पड़ गिरेगी तो घर के सारे भक्त और घर खत्म हो सकता है, तो भगवान गोकुल के बाहर उसको ले गए और उसने भयावह रूप आदि प्रकट किया। भगवान ने उनके प्राणों को चूसा, इतने विशाल थे कि उनका स्पर्श, बालों का स्पर्श बादलों को हो रहा था। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी उनके शरीर, हाथ आदि, पांव, नथने, सबका वर्णन है भागवतम में। तो वो जैसे गिरे, तो गिरने के बाद भगवान तो भगवान ही है, हाँ, भगवान उसके ऊपर खेलने लगते, नाचने लगते, गाने लगते हैं। तो उस समय सारी गोपिकाएं देखते, उनको ज्यादा चिंता बाल कृष्ण की है, तो गोपिकाएं दौड़ते हुए जाते, अभी वो यश पूतना गिर गई है, लेटी हुई है, उसके ऊपर कृष्ण के ऐसे खेल रहे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो कृष्ण खेल रहे थे, गोपियों ने देखा ये तो पहाड़ के भांति ऊंची है, कैसे जाए। तो सारे माताएं, जैसे आप सब माताएं हैं, ब्रज में भी ऐसा ही ग्रुप है, सारे माताएं इकट्ठा हो गए, उन्होंने सीढ़ी वगैरह लाए और चढ़ गई ऊपर, और कृष्ण को वहां से उठाया और लेके आए। यशोदा माता ने उनको ले लिया, यशोदा माता ने उनको स्तनपान करना आदि शुरू कराया और गाय के पूंछ आदि से उनको शुद्ध किया, उनके ऊपर गोमूत्र आदि छिड़काया, उनका गोबर के जल से अभिषेक कराया, पंचामृत आदि से अभिषेक आदि किया। तो भगवान इन सारी चीजों को स्वीकार करते हैं गाय के द्वारा, हाँ, गाय के द्वारा भगवान की रक्षा करने के लिए है, और भगवान के नामों का उच्चारण करती है यशोदा। तो भगवान सोच रहे थे जब ये गाय से संबंधित सारी चीजें हैं, उनको रक्षा के लिए, इनको शुद्धि के लिए यूज हो रही थी, तो भगवान ने सोचा कि ये गाय वास्तव में मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो गोपाल बनूंगा। क्या बनूंगा? उन्होंने नहीं कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, भगवान ने बनना है तो क्या बनना है? गोपाल। तो भगवान तभी सोच रहे थे ये पुत्रावध के समय, कितने दिन के थे भगवान? 6 दिन के थे। तो ऐसे भगवान ये दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं। तो नंद महाराज अभी मथुरा से आ रहे थे, मथुरा से उन्होंने जब महावन के वन में प्रवेश किया, गोकुल के नजदीक आए, तो उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, सारी जो आकाश में जो हवा है वो सुगंधित हो रही है, क्योंकि पूतना का जो स्पर्श है भगवान के शरीर से हुआ था, जिनके कारण पूतना का शरीर भी दिव्य हो गया, जो उसके शरीर को जलाया कैसे अंतिम संस्कार, अलग अलग टुकड़े किए और अलग अलग रूप से जलाया गया, तो जब धुआं निकल रहा था तो उसमें चंदन की सुगंध थी पूरे शरीर में। तो वहां के आके उनको पता चला, आनंद महाराज को, कोई बहुत बड़ी घटना हुई है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण आपने ये जो दिव्य लीलाएं हैं ब्रज में प्रकट करते हैं और सदैव वृंदावन वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण का और कोई कार्य नहीं है, भगवान का एकमेव कार्य है कैसे ब्रजवासियों को अपने लीलाओं के द्वारा आनंद प्रदान करना। आनंद लीला मय विग्रहाय, भगवान का विग्रह आनंदमय है। हेमाम देव्य छवि सुंदराय, भगवान का जो रूप है वो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से भगवान ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान अभी 3 महीने के हो गए हैं, तो इन्होंने उत्थान संस्कार मनाना शुरू किया। मतलब जो बच्चा पेट के बल लेटता है, उल्टा हो जाता है, तो जब ये फेस्टिवल मना रहे थे तो सारे ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को आदि बुलाया, उनके द्वारा स्तुतियां आदियों का पाठ हुआ। तो उस समय कृष्ण को लेकर दूध पिलाना भूल गई यशोदा माता, और जो स्तुतियां और यज्ञ आदि हो रहे थे उनको सुनने के लिए, देखने के लिए यशोदा माता बैठ गई ब्राह्मणों के सामने। तो फिर देखा कि उस समय बालक सो गया है, तो वैसे वो गोद में उनको लेकर, एक जो छोटा सा शकट, मतलब छोटी सी बैलगाड़ी थी, तो उसके नीचे जैसे झोली बनाकर हम रखते हैं, तो वैसे वहां भगवान को सुला के वो आ गई, फिर से कृष्ण कथा सुनने के लिए, यज्ञ आदि का उच्चारण करने के लिए। तब जब वो आ गई तो देखा कि कृष्ण बालक वहां रोते जा रहे हैं, जग गए वो, लेकिन इतना सारा ध्वनिया आदि हो रही थी कि जिसमें किसी को कृष्ण के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, और भगवान रोते जा रहे थे। तो उस समय अभी पूतना का वध हो गया, तो उन्होंने क्या किया, कंस ने तुरंत दूसरा खिलौना भेजा। दूसरा खिलौना कौन सा था? शकटासुर, उसका दूसरा नाम था उत्कच। तो शकटासुर को भेजा जिसके पास कोई स्थूल शरीर नहीं था, शरीर उसका दिखाई नहीं दे रहा था, पूतना का तो शरीर आदि दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो शक्तासुर है, दूसरा असुर है, उसका शरीर आदि दिखाई नहीं दे रहा था। जो आया और उस ठेले के ऊपर या बैलगाड़ी के ऊपर बैठा, और इस भावना से कि क्या करूंगा इस पूरे, क्योंकि उस बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारे पात्र आदि रखे जाते थे, दूध दही के घड़े आदि रखे जाते थे, कि इनके द्वारा इस बालक के ऊपर गिराऊंगा और उसको मारूंगा। तो भगवान तो जानते हैं, ऊपर बेटा तुम बैठे हो ना, रुको अभी थोड़ी देर इंतजार करो। हाँ, तो यहाँ माता यशोदा निमग्न हो गई थी, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बालक रो रहा है। तो थोड़ा समय बीता तो भगवान ने अपना चरण हल्के से ऊपर किया, जैसे उन्होंने चरण अपना ऊपर किया तो उसका स्पर्श होते ही वो शक्तासुर मर जाता है, और वो जो सारा ठेला है अस्त व्यस्त हो जाता है, सारे बर्तन इधर उधर गिर जाते हैं। और उस समय यशोदा माता, नंद महाराज सारे दौड़ते हुए वहां आते कि हुआ क्या, तो सब पूछते कि किसने किसके द्वारा ये किया गया है, तो कोई कुछ कह नहीं पाता, सब कह रहे थे भगवान के चरणों का स्पर्श के कारण ये सब चीजें हुई है। तो इस प्रकार से भगवान शक्तासुर का वध करते हैं, और यशोदा माता फिर और कुछ महीने बीतते हैं, तो पहला भगवान का जन्मगांठ, जिसको वर्षगांठ कहते हैं, पहला जन्माष्टमी फेस्टिवल आता है। तो ऐसे इसी उत्सव के बाद एक दिन भगवान कृष्ण को लेकर यशोदा माता दूध पिला रहे थे, और दूध पिलाने के ऊपर उनको ऐसे लेकर हाथ में लेकर ऊंचा उड़ा रहे थे, जैसे छोटे बच्चे को ऊपर हम उड़ाते हैं। तो भगवान ने सोचा ये माँ क्या कर रही हूँ, मैं तो ना बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ, जैसे फेस्टिवल में झूले आते हैं बहुत ऊंचे जाते हैं, तो वैसे भगवान ने सोचा कि ये माता तो मुझे कितना ऊपर भेजोगी, मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मेरी इच्छा तो आकाश को छूने की है, मैं बहुत ऊंचा जाना चाहता हूँ। तो उस समय भगवान बहुत भारी हो जाते हैं, यशोदा माता सोचते कि अभी तो बच्चा बिल्कुल रुई के समान हल्का था, एक कमल पुष्प के समान हल्का था, अभी तो ये पर्वत के समान भारी हो गया है। तो उसने वहीं रख दिया आंगन में, चले गई घर में, इसलिए बच्चों को अकेले छोड़ने में क्या बीतती है, अभी देखिए अकेले नहीं छोड़ना है। हाँ, तो माता यशोदा चली गई और अपने बाल कृष्ण को अकेला आंगन में छोड़ा, और उसी क्षण तीसरा खिलौना कौन थे, तृणावर्त, जो बवंडर के रूप में एक आसुर कंस के द्वारा भेजा गया ब्रज में आता है कृष्ण को मारने के लिए, तो वो इतना बड़ा बवंडर आ जाता है ब्रज में या गोकुल में कि चारों ओर एक प्रकार से अंधेरा हो जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी को देख नहीं पा रहा था, सारे घर महल धूल आदि से ढक गए थे। और यशोदा माता को तुरंत याद आया कि मेरा बाल कृष्ण बाहर है, अकेले है, अपने घर के सारे कार्यों को छोड़कर यशोदा दौड़ते हुए बाहर आए। बाहर आती है तो देखती है अपने महल के गुंबदों को देखती है और आंगन में देखती है कि कृष्ण वहां नहीं है, चारों ओर अंधेरा है। तो यशोदा माता रोने लगती है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका विलाप उसी प्रकार से था जिस प्रकार से एक गाय जब अपने बछड़े को खो देती है, और बछड़े को खोने के बाद गाय जिस प्रकार का विलाप और क्रंदन करती है, उसी भांति यशोदा माता आंगन में अपने शरीर को डालकर रो रही थी कृष्ण के विरह में। और उस समय गोपिकाएं आती, तो कृष्ण तो अभी ऊपर चले गए थे अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, झोला तो नहीं था लेकिन एक खिलौना भेजा था उन्होंने कंस ने, तो ऊपर गए, कई ऊपर गए, बहुत ऊंचा ले गया तृणावर बवंडर भगवान को, और भगवान उसके कंधे में बैठे थे, कंधे की सवारी, ऊपर 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 जब गए तो वो सोचा कि अभी इस बालक को मार देता हूँ। तो भगवान जब कंधे में बैठे थे तो गला तो नजदीक ही था, यहाँ बैठोगे तो नजदीक क्या है, गला है, अभी बच्चे के हाथ गले में पहुंच जाएंगे यहाँ बैठने से। हाँ, तो क्या करते भगवान, उसका गला पकड़ लेते हैं और दबाना शुरू करते हैं, वो चिल्लाना शुरू करता है, आक्रोश करता है, क्रंदन करता है, अरे अरे मुझे छोड़ मुझे छोड़। तो भगवान कहते जिसको मैंने एक बार पकड़ा है ना, अपने जीवन उसको जीवन भर नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, भगवान अपने चरणों में, भगवान चरणों में स्थान किसी को देते तो नहीं छोड़ते, जिसको हाथ से पकड़ा है उसको कहाँ छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं भगवान। तो भगवान ने कहा अभी छुट्टी नहीं है, अभी छुट्टी बाद में। तो भगवान ने गला पकड़ा तो उसके आंखें बाहर आने लगी और नीचे गिर गया एक विशाल पत्थर के ऊपर। त्रिनावर गिरता है और भगवान उसके छाते में ऐसे खेल रहे कि कुछ हुआ ही नहीं। माता यशोदा की ये जो गोपिकाएं आती हैं भगवान को लेने के लिए, तो गोपिकाएं कहते यशोदे तुम्हारा हृदय क्या पत्थर का है क्या, इतना बड़ा बवंडर आ गया था, तूफान आ गया था, धूल सब जगह हो गए थे, बालक को अकेले छोड़ के चली गए। हाँ वो कहते नहीं नहीं मैंने अकेले नहीं छोड़ा, हाँ ये बालक ही इतना भारी पर्वत के समान हो गया था। गोपी कहती तुम ना झूठ बोलती हो। गोपियां क्या क्या कहती है कि आप झूठ बोल रही हो। गोपिकाओं ने कहा ये बालक तो एक पुष्प के समान हल्का है, रुई के समान हल्का है, अभी ये बच्चा पर्वत के समान भारी कैसे होगा। तो इस प्रकार से हाँ यशोदा माता और ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए भगवान रोज नया नया खिलौना तोड़ देते थे, नया खिलौना चाहिए। तो भगवान की एक विशेषता है वृंदावन में, भगवान इन आसुरों का वध करते हैं तो वो अपने शरीर को बड़ा नहीं करते। भगवान वामन देव के रूप में आए तो उनको 3 पग भूमि चाहिए थी। ओरिजिनली वो छोटे से बटू ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण थे, 3 पग भूमि चाहिए थी, दिखाए छोटे पांव, लेकिन जब नापने का समय आया तो बड़े बड़े पांव। भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो अपना विशाल वपु, अपना विशाल दिव्य देह को, शरीर को प्रकट किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं किया। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान है। तो इन्होंने मारा कैसे इन 3 अलग अलग आसुरों को, जो अपने सबसे सॉफ्ट शरीर के भाग हैं। पहले आसुर को मारा किससे मारा, ओठों से, पुतना का वध ओठों से कर दिया। और दूसरे जो शक्टासुर है उसको अपने चरण कमल से, अभी कमल का स्पर्श हो जाए आपको आप मरोगे क्या, नहीं आनंद आएगा। कमल का फूल आप रोज मारो या आनंदित हो जाओगे, गदगद हो जाओगे, हसमुख हो जाओगे, लेकिन यह चरण कमल का स्पर्श हुआ कि नहीं तो शक्टासुर मरा। और ये अभी अभी किसको मारा भगवान ने, तृणावर्त का वध किया अपने हस्त कमल से। तो भगवान इस प्रकार से इन आसुरों का एक प्रकार से वध करते हैं। हाँ ये जो शक्टासुर है और जो तृणावर्त आदि है इनका वो वध करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और माता यशोदा जब दूध पिला रही थी तो भगवान ने जब मुंह खोला तो उनके मुख में उन्होंने उनका विश्वरूप, विश्वरूप उनको ब्रह्मांड, सारा जो ब्रह्मांड है वो दिखाई देने लगा। इस प्रकार से जो कृष्ण है उनकी जो लीलाएं हैं वो अलौकिक हैं, इस भौतिक जगत के भांति नहीं है, कुछ दिव्य हैं। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान अभी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, बड़े हुए हैं तो उन्होंने और एक लीला करना शुरू की। और वो फेमस लीलाएं क्या है, माखन चोरी करना। तो भगवान सदैव उनको आनंद आता था, ऐसे नहीं कि यशोदा माता के घर में कोई माखन आदि नहीं था। भगवान सदैव माखन आदि की चोरी करते थे क्योंकि गोपिकाएं इतना प्रेम आदि के साथ बनाती थी। तो उन सब लीलाओं का वर्णन हम थोड़ी देर करते हैं, हम 5-10 मिनट के लिए कीर्तन करें, थोड़ा सा खड़े हो सकते, थोड़ा सा हम ना चेंज, तो हमारे भक्त 10 मिनट या 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, फिर हम कथा को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
माइक ले लो हाथ में, खड़े खड़े इसको आप अपने पास
लगा। वो भगवान को या यशोदा माता को शिकायतें किया करती थी कि आपका ये जो बालक है रोज हमारे घर में आता है, वो खुद भी मक्खन खाता है, बच्चों को भी खिलाता है, बंदरों को भी बांटता है, हमारे बच्चों को तंग करता है। इस प्रकार से बहुत सारी शिकायतें लेकर गोपिकाएं आती थी और वो कहती थी कि कई स्थानों में हम मक्खन छुपा के रखते हैं अंधेरों में, लेकिन फिर भी आपके बालक के शरीर में जो गहने हैं, आभूषण है, जिनके प्रकाश के कारण वो अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेता है और उसको खा लेता है। तो सारी गोपिकाएं आती थी, फिर यशोदा माता कहती थी कि मैं उसके सारे गहने निकाल देती हूँ। गोपिकाएं कहती नहीं नहीं, उनको देखने गहने में देखना और अच्छा लगता है कृष्ण को। तो इस प्रकार से कृष्ण शास्त्र भागवतम वर्णन करता है कि अलग अलग गोपिकाओं के घर जाते थे। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं जब मक्खन दही आदि बनाते थे तो उस समय केवल कृष्ण का स्मरण करते थे कि ये चीजें मैं बना रही हूं, लेकिन बाहरी रूप से शिकायत करते थे, लेकिन अंदर भावना थी कि कृष्ण आ जाए मेरे घर में, मक्खन दूध दही आदि सबको खा के चले जाए, उससे उनको एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता था। तो ऐसे वो इंतजार करते थे, अरे आज कृष्ण क्यों नहीं आए मेरे घर में। इस प्रकार से कृष्ण आते थे अलग अलग गोपिकाओं के घर में। और एक गोपिका कृष्ण को एक दिन कैसे पकड़ती है मक्खन खाते हुए, रेड हैंड पकड़ती है। कैसे? रेड हैंड नहीं, व्हाइट हैंड पकड़ती है। अभी मक्खन में हाथ डालेंगे तो रेड नहीं होगा, कैसे होगा? व्हाइट हैंड पकड़ती है, प्रभावती नाम की गोपिका। और प्रभावती ही कृष्ण को पकड़ लेती है हाथ, आज पकड़े गए हो, आज मैं ले चलूंगी यशोदा माता के पास और दिखाऊंगी, ये रहा आपका सुपुत्र बालक जिसको मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। तो प्रभावती ले गई। कृष्ण कहते नहीं नहीं, क्षमा करो मुझे, इस बार छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी नहीं। प्रभावती भी बहुत जिद्दी गोपी थी, वो ले गई। तभी नंद महाराज का महल जहाँ बहुत सारे कृष्ण के सखा कृष्ण का इंतजार करके खड़े थे इंतजार के लिए, और वहां यशोदा माता दरवाजे में खड़े थे और नंद महाराज भी वहां थे। तो उस समय प्रभावती ने जब नंद महाराज को देखा तो अपना सर जो है ढक लिया, घूंघट डाला। अभी यशोदा होती तो नहीं डालती, तो डाला तो पकड़ते हुए बच्चे को ले जा रही है। तब तक भगवान, अब वो बोलने लगी, ये रहा तुम्हारा बालक, मैंने इसको पकड़ा है। तो भगवान तो नंद महाराज और यशोदा देखकर हंसने लगे कि ये तो मेरे बालक कृष्ण के बारे में बोलती जा रही है, लेकिन पकड़ के तो अपने बालक को लाई है। वो कहते प्रभावती देखो देखो तुम्हारे हाथ में कौन है। तो प्रभावती थोड़ा घूंघट ऐसे करके देखती तो मेरा बालक, ए तुम कहां से आ गए मेरे हाथ में। तो प्रभावती वापस जब ले जा रहे थे तो भगवान कहते देखो मुझे गलती से मत पकड़ना अगली बार, इस बार तुम्हारा बालक बन के आया हो, अगली बार पति बन के तुम्हारे साथ आऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभावती डर जाती है। तो कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार माता यशोदा को गो पूजा करनी थी तो कृष्ण को कहा कि जरा एक बछड़े को लेके आ जाओ घर के अंदर, थोड़ा सा अंदर के अंदर की ओर। तो कृष्ण तो हमेशा कुछ कुछ नटखट कार्य करते हैं। तो कृष्ण का मतलब ही है कर्षति इति कृष्ण, जो अपने सारे कार्यकलापों से हर जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं वो कृष्ण है, ये उनका नाम है। भगवान का जो सर्वोच्च परम नाम कोई है तो वो कृष्ण है। हाँ, तो ऐसे कृष्ण को जो यशोदा माता ने आज्ञा दी, भगवान को अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करना बहुत आनंद आता है। कभी कभी नंद महाराज को पूजा करनी थी तो कहते थे जाओ पूजा का सामान लेके आओ। कभी कभी नंद महाराज के लिए चप्पल सुन कहते थे, यशोदा कहती थी खड़ाओ लेके आओ, तो भगवान उनके जूते, नंद महाराज के जूते खड़ाओ सर में ढोते हुए आ जाते, ये रहा माता। इस प्रकार से भगवान आनंदित हो जाते हैं, अपने भक्तों की सेवा करने का मौका उनको मिलता है और सदैव लालयित रहते कब मौका मिलेगा कि मैं मेरे अपने भक्तों की सेवा करूं। तो ऐसे जो कृष्ण है इन प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो उनको जब बछड़ा लाने के लिए कहा तो लेके आए। अभी वो इजीली नहीं लाए, वो आए तो उसके ऊपर बैठ के आ गए। अभी घर के अंदर घुसना ही था, जैसे किसी को बोलो कि बेटा बछड़ा लाओ तो उसका दोरी पकड़ के खींच खींच के लाएगा। अभी ये तो महान नर्तक है, नटवर है, तो ये बैठ के आ गए उसके ऊपर। बैठ के आए तो भी शान नहीं बैठे, चलते चलते देखा एक शिखर टंगा हुआ था, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो सब मटकी दही दूध कुछ रखा था यशोदा माता ने। तो बछड़ा जब उसके नीचे से गुजर रहा था, इन्होंने पकड़ लिया उसको और बछड़ा चला गया और कृष्णा लटक के रह गए। यशोदा माता देखने लगी बछड़ा तो आ गया या गाय आ गई, लेकिन मेरा बेटा कहाँ गया। तो यशोदा तो बाहर आई तो देखा कि बेटा लटक रहा है, उसको नीचे उतार दिया। इस प्रकार से माता यशोदा और नंद महाराज को सदैव आनंद प्रदान करते थे कृष्ण। तो फिर ऐसे खेलते खेलते कृष्ण को यशोदा माता हमेशा अपने संग चाहती थी। एक दिन बलराम और उनके सखाओं के संग में बाहर आंगन में खेल रहे थे तो कुछ दुष्टता हो गई आपस में। तो बलराम और सारे सखा कहते कि माता यशोदा, कृष्ण ने आज मिट्टी खाई है। क्या खाया है? मिट्टी खाई है। तो फिर कृष्ण कहते नहीं नहीं, ये लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं। तो फिर भगवान माता यशोदा कहती हैं, दिखाओ। तो फिर जैसे अपना मुंह खोलते हैं तो उनको मिट्टी तो नजर नहीं आती, लेकिन सारा जो ब्रह्मांड है, एक प्रकार का विश्व रूप है, वो देख लेते हैं। इस प्रकार से कृष्ण वृंदावन में ऐसी अनंत लीलाओं में निमग्न होते थे। आनंद लीला या आनंद लीला जिनको कहा जाता है, जिनमें खुद डूब जाते थे और अपने ब्रजवासियों को भी डुबाते थे। तो ब्रजवासियों के जो प्राण है वो कृष्ण है। ब्रजवासी कभी देख नहीं सकते कि कृष्ण दुखी है, वो सदैव अपने आप को भूल कर अपनी सारी चीजों को कृष्ण के चरणों में समर्पित करके उनकी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। मानस देहो जो किछु मोर, अर्पिलो तुवापदे नंद किशोर। हे नंद किशोर कृष्ण, मैं अपना मान, मेरा शरीर, जो भी मेरे पास है, वो सारा आपके चरणों में या आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपनी अनंत लीलाएं प्रकट करते हैं। बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, ऐसे कई आसुरों का वो वध करते हैं। जब इन आसुरों का, अघासुर का जब वध किया, जो सांप के रूप में आया था, और भगवान ने अघासुर को सुबह के समय में मारा। भगवान जब अब अघासुर का वध किया तो भगवान 5 साल के नहीं हुए थे। तो भगवान जब अपने बछड़ों को चराने के लिए ले जाते थे तो ऐसे नहीं कि भगवान ने कुछ ही आसुरों का वध किया है, नहीं, भगवान का ये नित्य क्रम था कि हर रोज ब्रेकफास्ट करने से पहले एक आसुर को मारना। क्या करना? ब्रेकफास्ट का मतलब आचार्यगण कहते कि वो आसुर स्वयं ही आते थे कि अभी ना आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो ये मार देते थे तब तक एक आसुर को, तो उसके बाद ही ब्रेकफास्ट ग्रहण करते थे। रोज नित्य कार्य था। तो ऐसे ही एक दिन भगवान जब यमुना में जल आदि ग्रहण किया, बछड़ों को जल पिलाया, तो उनके जो सखागण है उन्होंने देखा कि कोई विशाल चीज एक प्रकार से अपना मुंह फैला के खड़ी है। तो वो दूर से तो सबको पता लगा कि ये सांप है विशाल, तो लेकिन बच्चे है, मस्ती करते हुए गए। उन्होंने कहा चलो हम एक साथ घुसेंगे ना इसके मुंह में, ये कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। हाँ, तो एक साथ ये सब घुस जाते, कहते और देखते किसको है, कृष्ण को। कहते कृष्ण हमारे साथ हैं तो हम किसी भी स्थान में जाने के लिए तत्पर हैं। तो वो सब उस अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं और कृष्ण सोचते कि मेरे सखागण उनको बचाना होगा। कृष्ण दुखी हो गए। कृष्ण वो अघासुर सोचने लगा कि मैं सारे सखा तो मेरे मुंह में आ गए जो सांप के रूप में प्रकट हुआ था, और लेकिन जो कंस का शत्रु है वो मेरे मुख में प्रवेश नहीं कर रहा है। तो फिर भगवान प्रवेश करते हैं और उनके मुंह में जाकर भगवान अपना विस्तार करते हैं। इतने विशाल हो जाते हैं कि जो अघासुर का गला अवरुद्ध हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर भगवान अपने सखाओं के संग में उनके मुख से बाहर आते हैं और बाहर आकर भगवान आनंदित होते हैं। कहते कि देखो अभी बहुत सुबह हो गई है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हम एक स्थान में यमुना पुलिन में बैठकर, यमुना के तट पर बैठकर भोजन को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब कृष्णा गोचारण या बछड़े चराने के लिए निकलते थे तो वृंदावन में हर जो उनका सखा है अपनी अपनी पोटली बांध के लेके आता था, जिन स्कूल में टिफिन देती है माता, तो ये गव्य चराने या बछड़े चराने जाते थे तो हर माता अपने ग्वाल बाल के लिए टिफिन दिया करती थी या पोटली दिया करती थी बांध के, और वो सारी चीजों को लेकर वो आते थे और जब बैठते थे एक स्थान में तो कृष्ण को बीच में बिठाते थे। और ये ग्वाल सखा जो भी लाए थे ऐसे नहीं कि मैं पहले खाऊंगा, उनकी भावना क्या थी, जो भी चीज में लाया वो सबसे पहले कृष्ण इसको ग्रहण करें और उसके उपरांत में। तो इस प्रकार से हर बालक कृष्ण जैसे बीच में बैठे, सारे बालक एक वृत्त में बैठ गए गोला बनाकर, हर कोई अपने अपनी माँ ने जो बनाया वो उनको दे रहा था। कृष्ण अति आनंदित होकर उसको ग्रहण कर रहे थे, खा रहे थे, और हर बालक को लग रहा था कि कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं और मैंने दिया हुए वस्तु को ग्रहण कर रहे खा रहे हैं, और इतने अधिक निमग्न हो गए हैं कि देवतागण भी आकाश से देखने लगे कि ये क्या परम भगवान हो सकते हैं, ये तो एक छोटे से गांव में वृंदावन में प्रकट होकर गव्वे चरा रहे हैं, बछड़ों की सेवा कर रहे हैं, ग्वाल बालों के संग में वन में भ्रमण कर रहे हैं और उनका झूठा आदि ग्रहण कर रहे हैं, ये परम भगवान कैसे हो सकते हैं? ऐसा प्रश्न इंद्र चंद्र वरुण इवन ब्रह्मा को भी हो गया। ब्रह्मा ऊपर से देख रहे थे, कितने मुख से देख रहे थे, चार मुख और इतनी सारी आंखों से वो भ्रमित हो गए। मोहयन्ति यत् सूरया, देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने सोचा मैं चेक करता हूं ये परम भगवान है या नहीं है। तो जो बछड़े उनके चल रहे थे ब्रह्मा उनको एक स्थान में छुपा देते हैं। तो जब भगवान सखाओं के संग में थे तो सखाओं ने कहा कि कृष्णा देखो हमारे बछड़े बहुत दूर चले गए, शायद बछड़े या गाय, आप अब देखो उनको ढूंढ के लाओ। तो भगवान ने सोचा मेरे सखागण इतने अधिक आनंद में है, इतने आनंद में मैं भंग कैसे डालूं, इसलिए भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा मेरी जिम्मेदारी है सारे गवों को बछड़ों को लाने के लिए भगवान निकलते हैं और अपने हाथ में यहाँ अलग अलग आचार और चपाती वगैरह जो भी डाल के और हाथ में मक्खन मक्खन के साथ या दही के साथ राइस डालकर हाथ में लेकर खाते हुए किसको ढूंढने जा रहे हैं, बछड़ों को। तो भगवान गए वहां ढूंढने, वहां उनको बछड़े आदि तो नहीं मिले, वापस ढूंढ ढूंढ के वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके मित्र सखागण वो भी नहीं है। तो भगवान सोचने लगते हैं, भगवान को पता चला कि ये काम ब्रह्मा ने किया होगा। हाँ, तो तुरंत भगवान अपने स्वयं ही अपना विस्तार करते हैं बछड़ों के रूप में, ग्वालों के रूप में, क्योंकि रात्रि होने का समय आ गया था और अभी वृंदावन में वापस घर जाना था। सबकी माताएं घर में विलाप कर रही थी कि आज बहुत लेट हो गया, देर हो गई कृष्ण को वापस आने में। तो कृष्ण अपना ही विस्तार करते हैं, बछड़ों के रूप में स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं, अपने सखाओं के रूप में प्रकट होते हैं, उनके वस्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं और वृंदावन गोकुल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही तो आज ऐसे था कि हर माता अपने बालक को पहले हर रोज मिलती थी, लेकिन इतना प्रेम इतना वात्सल्य उमड़ कर नहीं आता था, लेकिन आज अपने बालक के प्रति इतना वात्सल्य भाव इतना प्रकट हो रहा था कि जितना कृष्ण के लिए था उनके हृदय में। हाँ, तो कृष्ण उस समय लगभग एक साल के लिए बछड़े या फिर उनके सखा बन के सारे ब्रजवासियों के घर में रहे, और ब्रह्मा आए कुछ समय के बाद देखा, अरे ये तो बछड़े वैसे की वैसे ही हैं, ग्वाल बाल वही हैं। उन्होंने देखा मैंने जा छुपा के रखे हैं उस स्थान में है या नहीं है, तो ब्रह्मा जाते चेक करते हैं, वहां जाकर देखते कि वहां भी बछड़े हैं, दो दो जोड़ी कैसे, तो फिर आके कृष्ण की शरण ग्रहण करते। ब्रह्मा कहते कि मुझसे गलती हो गई, फिर ब्रह्मा प्रार्थना करने लगते हैं, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि आप वास्तव में परमेश्वर हो और आप सारे कारणों के कारण हो। तो इस प्रकार के उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मा को शिक्षा प्रदान करते हैं जो भगवान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं, इंद्र मोहित हो जाते हैं, जिनके द्वारा भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन में भगवान इस प्रकार के दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। और लेकिन एक समय में जब कंस इस प्रकार से आसुरों को भेजा जा रहा था लेकिन भगवान उन सब का वध करके वापस भेज रहे थे, तो भगवान ने सोचा कुछ बहाना बनाता हूँ, ये नंद महाराज का जो बालक है कृष्ण और बलराम ये दोनों यहाँ चले आए मथुरा। तो उन्होंने अक्रूर को भेजा। अक्रूर जब वृंदावन में आए, वृंदावन की भूमि को उन्होंने संध्या के समय में मथुरा से रथ लेकर वृंदावन में प्रवेश किया, तो देखा कि वृंदावन की जो भूमि है बहुत आनंदित हो गई थी, आह्लादित हो गई थी। और वहां पूरे ब्रज के भूमि में कृष्ण के चरण कमल पड़े हुए थे, चरण कमलों का स्पर्श उस भूमि को प्राप्त हुआ था, और मिट्टी के ऊपर कृष्ण के जो चरणों के चिन्ह है वो दिख रहे थे। और संध्या के समय में गव्य जा रही थी, तो अक्रूर वहां अपने रथ से उतर कर वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते हैं। वो कहते कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि ब्रज भूमि में या वृंदावन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वास्तव में वृंदावन जाने के लिए कैसे जाना चाहिए व्यक्ति को, अक्रूर की भांति। अक्रूर जब गए, उतरते पहले वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना की मेरी सेवाओं को स्वीकार कीजिए और कृपा मुझे प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं आपका स्मरण करता रहूं। और फिर नंद महाराज और यशोदा को निवेदन किया कि कंस ने वहां मथुरा में उनको बुलाया है। हाँ, तो नंद महाराज आदि सब तैयार हो जाते हैं मथुरा निकलने के लिए। लेकिन कृष्ण जब वापस जाने के लिए रथ के ऊपर सवार होते हैं, तो सर्वाधिक बड़ा जो दुख है या हृदयाघात है वो गोपियों को होता है। सारी ब्रज की जो वधुएं हैं, गोप ललनाएं या बालिकाएं हैं, वो आती हैं नंद महाराज के ग्रह के सामने और कृष्ण को देखते कि कृष्ण तो तैयार हो गए हैं। किस पर बैठ रहे थे कृष्ण? रथ के ऊपर। गोपियों के प्राण हैं। और कृष्ण जब रथ के ऊपर सवार हो गए निकलने के लिए, तो गोपियां रथ का हर भाग को पकड़े जा रहे थे, रथ का पहिया पकड़ रही थी, घोड़ों को पकड़ रही थी, हर चीज को पकड़े जा रहे थे और रोते जा रहे थे। उनको ऐसे लगा कि हमारे शरीर से ये अक्रूर प्राण लेके जा रहा है। नाम अक्रूर है, अक्रूर का मतलब जो क्रूर नहीं है लेकिन वास्तव में निर्दयी है, ये क्रूर है जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। इस प्रकार से गोपी का ये विलाप करती है और भगवान एक शब्द बोलकर वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना होते हैं। भगवान कहते मैं आऊंगा, मैं आऊंगा वापस। ये एक शब्द बोलकर ब्रज से बाहर निकले कृष्ण, जब भगवान की आयु 11 साल की थी। और जब कृष्ण आए मथुरा में जब प्रवेश करने वाले थे, क्योंकि भगवान ने मथुरा के बारे में सुना था, मथुरा क्या है, शहर है, भगवान ने शहर के बारे में बहुत सुना था। और वो ब्रज के गांव में रह रहे थे एक प्रकार से, लेकिन ऐसे नहीं कि ब्रज तो वैकुंठ या किसी शहर से बहुत अधिक दैदीप्यमान है, बहुत अधिक ऐश्वर्यशाली है। तो जब भगवान मथुरा के बाहर आए तो अक्रूर ने कहा कि आप मेरे घर चलिए, आपके जो चरण कमल है आप मेरे घर में रखिए, जिन चरणों से गंगा निकलती है और जिस गंगा को शिवजी महादेव अपने सर में धारण करते हैं, सारे देवी देवता आपके चरणों की धूली के लिए लालायित रहते हैं, बरसाना में ब्रह्मा पर्वत बन के आपके चरण धूली के लिए वहां पड़े हैं, शंकर महादेव वृंदावन में पर्वत बन के नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में है जिनके ऊपर नंद महाराज का महल है। इस प्रकार से सारे देवी देवता भगवान के चरण धूलि की कामना करते हैं। तो अक्रूर ने कहा कि आप हमारे घर चलिए, आपके चरण कमल से हमारा घर पवित्र कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं पहले प्रवेश करूंगा मथुरा में, उसके उपरांत मैं इन आसुरों का वध करके जो यदुवंश के शत्रु हैं फिर आपके घर में आऊंगा। तो अभी भगवान अकेले मथुरा में प्रवेश कर रहे थे। किसके साथ प्रवेश कर रहे थे? बलराम और अपने सखाओं के संग में। तो जैसे कृष्ण निकल पड़े मथुरा के गलियों में या रास्ते में, प्रमुख जो रास्ता था, तो जैसे ही मथुरा वासियों को पता चला कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर त्रिभंग ललित कृष्ण मथुरा में प्रविष्ट हुए हैं, उसी क्षण सारे मथुरावासी अपने अपने कार्यों को त्याग कर छोड़कर बाहर आने लगे। जो स्त्रियां स्नान कर रही थी स्नान को छोड़कर अपने छत पर भागने लगी, जो स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी उसको बच्चों को वहां छोड़कर छत पर भागने लगी, जो कपड़े पहन रही थी वो कपड़े छोड़कर भागने लगी, जो काजल लगा रही थी एक आंख में काजल लगाकर कृष्ण को अपने दोनों आंखों से देखने के लिए भाग गई। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति स्त्री पुरुष हर कोई व्यक्ति जिस स्थिति में था उस स्थिति को छोड़कर केवल कृष्ण को देखने के लिए उत्साहित या लालायित थे और सारे अपने छत के ऊपर आते हैं और कृष्ण एक विशाल जैसे हाथी चलता है तो कितना मधुरता से चलता है, मतलब बहुत गजगति कहते हैं उसको गजराज, उस गजराज के भांति कृष्ण मथुरा में चल रहे थे और उनके मुख में स्मित हास्य था और अपनी जो नजरें हैं छत के इर्द गिर्द बढ़ा रहे थे और सारे मथुरा वासियों को देख रहे थे। मथुरा वासी आनंदित थे, कह रहे थे कि ऐसा भी रूप कोई हो सकता है, ये वृंदावन के ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो नित्य रूप से कृष्ण के इस दिव्य सौंदर्य का नित्य दर्शन करते हैं, उस सौंदर्य को पीते हैं। तो मथुरा वासी कहते थे कि हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारी आंखें कृष्ण को देखे बिना अभी तक वंचित रही हैं। तो फिर कृष्ण आगे जाते हैं तो उनको एक धोबी मिलता है, धोबी किनका धोबी था, कंस का धोबी था। तो जब वो धोबी उनको मिला जो कंस के लिए कपड़े उनके धो रहा था या रख रहा था, तो उस समय भगवान कृष्ण उस धोबी से मांगते हैं, धोबी से कहते हैं कि आप हमें थोड़े वस्त्र दे दो, तो धोबी वस्त्र आदि नहीं देता और वो कहता है कि आप कहां के गांव के आए हो, आपको वस्त्र आदि हम नहीं देंगे, ये तो वस्त्र कंस के हैं, तो यदि आप इन वस्त्रों को लोगे तो कंस आपको दंडित करेंगे। तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं और उस धोबी का वध करते हैं, अपने हाथ से उसकी गर्दन अलग करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वस्त्रों को धारण करके कुछ वस्त्रों को लेकर भगवान आगे पहुंचते थे। एक दर्जी मिलता है मथुरा में, तो दर्जी तैयार रहता है कृष्ण और बलराम को देखकर और वो कहता है कि मेरा कितना सौभाग्य कि आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिला है, तो उनके लिए अच्छे वस्त्र सिला के प्रदान दे देता है। और भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरा जो सायुज या मेरा जो सारूप्य रूप है या मेरा जो धाम है उसकी प्राप्ति होगी। तो भगवान ऐसे मथुरा में जाते जाते आगे आगे पहुंचे तो एक माली को मिले जिन्होंने उनको मालाएं प्रदान की। फिर भगवान थोड़े आगे जाते तो उनको एक युवती मिलती है जिसका नाम क्या था, कुब्जा। तो कुब्जा उसी समय जल्द गति से जा रही थी, जो बिल्कुल वक्र हो गई थी, जिसका वक्र रूप था, तो वो गज जल्दी जल्दी जा रही थी, हाथ में चंदन का पात्र था और वो आगे जा रही थी। भगवान ने कहा, हे सुंदरी कहाँ जा रही हो। तो कहते हैं, अरे मुझे मथुरा में किसी ने सुंदरी नहीं कहा, कौन है जो मुझे सुंदरी पुकार रहा है। तो उसने देखा ये तो कृष्ण है बलराम और सखाओं के साथ। तो उन्होंने कहा, मैं तो ये चंदन रोज राजा कंस के लिए ले जाती हूँ, ये सुगंधित और विशेष चंदन है जो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ और उसका लेपन करती हूँ या प्रदान करती हूँ कंस को, जिसके द्वारा वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ये चंदन आपके लिए है, कृष्ण को कहा। तो वो कृष्ण उनसे चंदन स्वीकार करते हैं और उनका लेपन कराते हैं अपने शरीर के ऊपर। तो भगवान उसकी थोड़ी सी सेवा स्वीकार करते हैं, किसके, कुब्जा की। तो उसके बदले में क्या करते हैं, उसी क्षण भगवान उसके अंगूठे या पाव पर एक अपना पाव रखते हैं और उसके टूटी को ऐसे पकड़कर ऊपर खींचते हैं। तो बिल्कुल अभी वो टेढ़े थे, कुब्जा थे, बिल्कुल सीधा हो जाती है और सबसे अधिक मथुरा की सौंदर्यवती युवती के रूप में प्रसिद्ध होती है। तो भगवान उसको भी छोड़कर आगे जाते हैं, आगे जाते जाते
पहुंचते हैं जहां एक धनुष रखा गया था शिव का बहुत विशाल कंस के द्वारा, और वो धनुष जो तोड़ेगा या उस पर प्रत्यंचा जो बांधेगा वो व्यक्ति मृत्यु का कारण होगा कंस का। तो ये जब गए कृष्ण बलराम तो सारे सेना उस धनुष को रक्षा कर रहे थे, और ये गए कृष्ण बलराम और सीधा उस धनुष के पास गए, सब उनको मना कर रहे थे। कृष्ण ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंच चढ़ाया, तो तुरंत उस धनुष जोर से टूटते हुए आवाज करता है, गर्जना करता है, और वो गर्जना कंस को सुनाई देती है। कंस सुनते हैं उसका भय ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अभी वो सोचता है कि निश्चित मेरा मृत्यु का कारण मेरे नजदीक आ रहा है। उनको पता चला कि किसने ये तोड़ा है, पता चला कि कृष्ण ने। तो उस रात्रि को कंस को नींद नहीं आया। कंस उस रात्रि में चित्र विचित्र स्वप्न देखने लगा। उसने स्वप्न में देखा कि वो शीशे के सामने खड़ा है लेकिन उसका सर नहीं है। दूसरा स्वप्न देखा कि एक गधा एक गाड़ी को ठेले को ढोते हुए ले जा रहा है, खींचते हुए है, जिसमें बहुत सारे प्रेत पड़े हैं, डेड बॉडीज है, उसमें उसके ऊपर कंस भी है। और ऐसे कई सारे स्वप्न जब कंस ने देखे तो कंस और भयभीत हो गया उस मृत्यु के पहले रात्रि में। तो जब दूसरा दिन आया, कृष्ण उसको तोड़ के धनुष को तोड़ के आके अपने निवास स्थान में रहते हैं। फिर सुबह सुबह जल्दी जाते हैं रंगशाला में जहां मल्ल युद्ध होने वाला था, चानूर मुष्टिक आदि, और जहां स्वयं कंस आदि वहां उपस्थित होने वाले थे, ब्रजवासी सारे मथुरा के निवासी वहां उस मल्ल युद्ध आदि को देखने के लिए एकत्रित हो गए थे। तो उस समय कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ उसकी ओर निकले तो वो मल्ल युद्ध रंगशाला का जो प्रवेश द्वार है वहां एक पागल हाथी को कंस ने वहां नियुक्त किया था उसके महावत के साथ, कुवल्यापीड। तो कुवल्यापीड बहुत शक्तिशाली हाथी था, 10,000 हाथी का बल रखने वाला, और भगवान बलराम के साथ जैसे घुसने वाले थे उस गेट में प्रवेश द्वार में अंदर, तो महावत उस हाथी को उकसा रहा था कृष्ण को मारने के लिए। तो लेकिन कृष्ण भी उस हाथी को मार डालते हैं, उसके दांत आदि तोड़कर अपने कंधे में उस दांत को लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण जैसे ही प्रवेश किए उस मल्ल युद्ध स्थल में तो वहां जो जो बैठे थे वो कृष्ण को देखने लगे। वहां के जो सर्वसाधारण निवासी थे मथुरा वासी, उन्होंने देखा कि ये हमारे हितेशी हैं। स्त्रियों ने देखा कि वो वास्तव में इस रूप की खान साक्षात कामदेव के समान है। क्षत्रिय राजाओं ने कृष्ण को देखा, लगा कि ये दंड देने वाले महान राजा हैं। और जब माताओं ने देखा तो उनको लगा कि हमारे पुत्र हैं। वात्सल्य भाव की वृद्धि उनके हृदय में हो गई। और जब कंस ने देखा, कंस ने क्या देखा, अपने मृत्यु को देखा। तो फिर चानूर मुष्टिक जो बहुत बलवान योद्धा थे, एक प्रकार से मल्ल योद्धा थे, बहुत विशाल शरीर से भी आयु से भी, कृष्ण तो अभी भी कृष्ण मथुरा आए 11 साल की आयु में, 11 साल का बालक है। तो चानूर उनको ललकारता है कि हे कृष्ण, मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है, वहां आप अपने सखाओं के संग में ब्रज के वनों में कुश्ती और मल्ल आदि खेलते रहते हो, मल्ल युद्ध करते हो। कृष्ण कहते हैं हम तो बालक आपस में खेलते हैं, लेकिन आप तो विशाल का शरीर वाले हो, आयु में मुझसे बड़े हो, हाँ ये सही प्रतियोगिता नहीं है। तो लेकिन वो बहुत जोर लगाने लगे। तो फिर कृष्ण और बलराम चानूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने लगे, और मल्ल युद्ध के उपरांत उसके बीच में बहुत लंबे समय तक वो मल्ल युद्ध चला। तो सारे जो मथुरा वासी वो दुखी हो रहे थे कि ये छोटे छोटे बालक है जिनके साथ ये बड़े बड़े योद्धा इस प्रकार से मल्ल युद्ध कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। तो भगवान और कृष्ण और बलराम ने उन दोनों चानूर और मुष्टिक का वध कर देते हैं। जैसे उनका वध किया तो जो कंस है ऐसे ऊंचे स्थान में मंच में बैठा हुआ था, और जैसे उन दोनों चानूर मुष्टिक का वध हुआ तो सारी जनता नाचने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, ब्राह्मण कृष्ण और बलराम की स्तुति करने लगे।
नगाड़े बजने लगे, देवताएं पुष्प वृष्टि करने लगे, लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल चुप्पी लगा के बैठा था। उनको जो नगाड़ों की आवाज सहन नहीं हो रहे थे, कृष्ण की प्रशंसा बहुत कष्ट दे रहे थे, चुभ रही थी कानों को, तो ऐसे कंस अपने स्थान में आदेश देते हैं कि नगाड़े बजाना बंद करो। मेरा आदेश है कि नंद महाराज के जो पुत्र है वसुदेव देवकी को कारागृह में डालो, नंद महाराज और यशोदा के साथ उनको क्या करो, नंद महाराज को लूट लो, उनका वध कर दो, और ये कृष्ण और बलराम को मथुरा से बाहर फेंक दो या ढकेल दो या भेज दो। इस प्रकार से जैसे कहा, कृष्ण सिंह के भांति गर्जना करने लगे। कृष्ण ऊंची कूद मारकर जो मंच था बड़ा सा हाइट में जहां बैठा था कंस, उसके पास जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। जैसे जो सिम्मा है दूर से अपना किसी प्राणी को देखता है खाने के लिए, तुरंत जंप मार के पहुंचता है, उसी भांति कृष्ण जंप मार के पहुंचे उस मंच पर जहां कंस बैठा था, और कंस ने देखा कृष्ण मेरे सामने है, तुरंत अपनी तलवार निकाली। तलवार निकालता है कि नहीं, कृष्ण ने उनका मुकुट गिरा दिया, राज मुकुट धाराशाही होकर सब महाकृष्ण के चरणों में गिर रहा था, और कृष्ण ने तुरंत उसके बाल पकड़े, बाल पकड़कर कंस को घसीटते घसीटते ले आए उस मंच से, घसीटते घसीटते जहां मल्ल युद्ध हो रहा था चाणूरमुष्टि के साथ जिनका वध किया था, उस स्थान में लाए। सारे मथुरावासी आश्चर्यचकित हो गए, मथुरावासियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम देख क्या रहे हैं। जिस कंस का नाम सुन के देवी देवता भयभीत हो जाते थे, उनको अभी एक कुत्ते के भांति एक सिम्मा जैसे अपने शावक को या हिरण को मार के घसीट के ले आता है, वैसे घसीटते हुए कृष्ण उनको लेके आ रहे थे और उनके ऊपर उनके छाती पे बैठ गए। छाती पे बैठकर कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने मुस्टिक अपने इसका प्रहार कर रहे थे हाथों से उनके छाती पर और मुंह पर, जिसके कारण कंस का भगवान वध कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अधिक से अधिक अपने उन्होंने वृंदावन में कभी आसुरों को मारने के लिए शस्त्रास्त्र नहीं उठाए। तो इस प्रकार से मथुरा में कृष्ण उनका वध करते हैं और नंद महाराज और यशोदा को आनंद प्रदान करते हैं, वसुदेव देवकी को आनंद प्रदान करते हैं। तो ऐसी अनंत लीलाओं का वर्णन जो शुकदेव गोस्वामी है राजा परीक्षित को करते हैं, और फिर उसके बाद भगवान सांदीपनि मुनि के यहाँ आश्रम में उज्जैन जो अवंती देश था उस समय, वहां सांदीपनि मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और फिर द्वारका में निवास करते हैं द्वारका देश के रूप में। इस प्रकार से भगवान की ऐसी अनंत लीलाएं हैं जिनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं, और आने वाले कल में भी उन लीलाओं को हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, दोनों हाथ लंबे ऊंचे कीजिए और ऊंची आवाज में मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, वृंदावन मथुरा धाम के, कृष्ण भगवान के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवताम के, हिताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद के, हरे कृष्णा।